آگے سبق دیکھیے بھائی. قال ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان. وقال زفر رحمه الله تعالى يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ولأن بالجماع تفطر الرغبة وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر. گزشتہ سبق میں ہم کتاب الطلاق پڑھ رہے تھے بھائی, اور پہلا باب طلاق السنہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ طلاق جو ہے وہ تین قسم پر ہے, ایک حسن, ایک احسن اور ایک بدعت. بھائی تو یہ طلاق حسن اور احسن ان کو طلاق سنی کہتے ہیں, یعنی یہ دونوں طلاقیں ہمارے نزدیک سنت ہیں. البتہ صاحب ہدایہ نے بالخصوص طلاق حسن کو طلاق سنت قرار دیا. وہاں دراصل امام مالک رحم اللہ کا رد مقصود تھا. امام مالک رحم اللہ کے نزدیک صرف طلاق احسن سنت ہے, حسن سنت نہیں. تو ان کا رد کرنے کے لیے بالخصوص فرمایا کہ طلاق حسن یہ طلاق سنت ہے بھائی. اور سنی طلاق کے اندر آپ نے پڑھا کہ چار شرطیں ہیں, وہ چار شرطیں آپ کے ذہن میں ہوں تو اس کے مطابق آپ فوراً معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی طلاق سنی ہے اور کون سی بدعی ہے بھائی. اور چار شرطیں کیا تھیں؟ کہ عورت کو جو طلاق دی جائے وہ طہر کے اندر دی جائے. دوسری شرط یہ تھی کہ وہ طہر بھی ایسا ہو جس میں صحبت نہ کی ہو. اور تیسری شرط یہ تھی کہ طلاق بھی رجعی ہو. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس طہر سے ماقبل والے حیض میں بھی صحبت نہ کی ہو بھائی. تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے اصل طلاق کے اندر ممانعت ہے بھائی, اور صرف حاجت کی وجہ سے طلاق مباح ہوگی, اور وہ حاجت ایک طلاق کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے, لہذا زائد طلاقوں کی اجازت نہیں ہوگی. زائد طلاقیں جو دے گا وہ بدعت ہے, وہ گناہ ہے, حرام ہے. جبکہ ہمارے نزدیک ایک تو ہم نے حدیث ذکر کر دی, حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو رجوع کا حکم دیا. انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کے اندر طلاق دے دی تھی, حضور علیہ السلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور سنت طریقہ بتلایا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس وقت طہر میں ایک طلاق دینا. تو دیکھو حضور علیہ السلام ان کو دوسری طلاق کا حکم دے رہے ہیں طہر کے اندر. معلوم ہوا ایک سے زائد طلاق دینا یہ بدعت نہیں ہے بھائی. اور نیز یہاں پر حاجت جو ہے, حاجت وہ تو ایک امر قلبی ہے, کون محتاج ہے طلاق دینے کا اور کون محتاج نہیں ہے یہ تو ایک دل کی بات ہے, ظاہر سے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. لہذا اس حکم کا مدار جو ہے دلیل حاجت پر ہو جائے گا. کس پر؟ حاجت کا. جب پتہ نہ چل سکے تو حکم کا مدار اس حاجت کی دلیل پر ہو جاتا ہے. اور یہاں پر دلیل حاجت یہ ہے کہ طہر کا زمانہ آ جائے, ایسا طہر جس میں خاوند نے صحبت نہیں کی. تو یہ تو رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے, اس کے باوجود خاوند طلاق دینا چاہ رہا ہے تو معلوم ہوا اس کو حاجت ہے. معلوم ہوا اس کو حاجت ہے, اور جب اس کو حاجت ہے تو حاجت کی وجہ سے طلاق مباح ہو جاتی ہے, لہذا یہ طلاق دے سکتا ہے. پھر اگلا طہر آیا اور یہ بھی رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے, لیکن اس میں بھی خاوند طلاق دینا چاہ رہا ہے, معلوم ہوا اس کو حاجت ہے. رغبت کے زمانے کے باوجود طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے, معلوم ہوا اس کو حاجت ہے. اور جب حاجت ہو تو پھر طلاق مباح ہو جاتی ہے, تو یہ دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا طہر آیا, یہ بھی رغبت کا زمانہ ہے, لیکن اس رغبت کے زمانے کے باوجود طلاق پر اقدام کر رہا ہے, معلوم ہو اس کو حاجت ہے. اور جب حاجت ہے تو طلاق اس کے لیے مباح ہو گئی, لہذا یہ طلاق دے سکتا ہے. اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دے دی جائیں. ایک لفظ یعنی طلاق کا لفظ ایک دفعہ لایا, ساتھ عدد ذکر کر دیا. کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں, یا اسی طرح کہتا ہے میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں, تو دیکھو ساتھ عدد ذکر کر دیا. تو طلاق کا لفظ تو ایک ہی ہے, البتہ ساتھ عدد ذکر کر دیا. یاد رکھو یہ طلاق بدعت ہے, اس لیے کیونکہ طلاق میں صاحب ہدایہ نے بتایا آپ کو کہ طلاق میں سنت دو اعتبار سے ہے, ایک عدد کے اعتبار سے سنت ہے اور ایک وقت کے اعتبار سے سنت ہے. आदत के एतबार से सुन्नत यह है कि एक तोहर में एक ही तलाक दी जाए, यानी एक ही तलाक दी जाए। और वक्त के एतबार से सुन्नत यह है कि ऐसे तोहर में तलाक दी जाए जिसके अंदर खावंद ने बीवी से सोहबत न की हो। तो हैज के अंदर तलाक देना यह भी बिदअत है, और ऐसा तोहर जिसमें सोहबत कर चुका है उसमें तलाक देना यह भी बिदअत है। वजह यह कि हैज जो है यह औरत से नफरत का जमाना है। साहिब हिदायत ने जिक्र किया कि यह जो हैज है औरत से नफरत का जमाना है, यानी इसका यह मतलब नहीं औरत की जात से, बीवी की जात से ही नफरत हो जाती है, मतलब यह है यानी सोहबत के एतबार से खावंद की उसमें रगबत नहीं होती, क्योंकि शरीयत ने भी हैज की हालत में औरत से सोहबत करने से मना किया है, और खुद इंसानी तबीयत भी गवारा नहीं करती कि औरत से हैज का खून जारी हो और वो उसके साथ सोहबत करे। तो लिहाजा ये जो हैज है ये औरत से नफरत का जमाना है। जब ये नफरत का जमाना है तो इसके अंदर शरीयत ने तलाक देने से मना कर दिया कि कहीं इस आरजी नफरत की वजह से तुम तलाक न दे दो बगैर हाजत के, बगैर हाजत के ही सिर्फ आरजी नफरत की वजह से तुम तलाक कहीं ना दे दो, इसलिए हैज के अंदर तलाक देने से मना किया। और नीज इसी तरह वो तोहर जिसके अंदर खावंद सोहबत कर लेता है उसके अंदर भी खावंद की ख्वाहिश चूंकि पूरी हो गई तो अब उसकी औरत के अंदर रगबत कम हो जाएगी। तो लिहाजा इस तोहर के अंदर भी शरीयत ने तलाक देने से मना किया कि कहीं इस आरजी आदम रगबत की वजह से खावंद तलाक न दे दे। लिहाजा कहा इस तोहर में भी जिसमें सोहबत की है तलाक देना मना है, हराम है, बल्कि तलाक ऐसे तोहर में दे जिसमें सोहबत नहीं की, क्योंकि यह तो रगबत का जमाना है। इसके बावजूद खावन तलाक देना का इरादा करेगा, तलाक पर पेशकदमी करेगा, तो मालूम हुआ इसको तलाक की हाजत है, और जब इसको हाजत है तो हाजत की वजह से अब तलाक मुबाह हो जाएगी और यह तलाक दे सकता है। तो लिहाजा एक ही कलीमे से तीन तलाकें दें या एक ही तोहर के अंदर दो या तीन तलाकें दे खावन तो ये सब बिदअत हैं भाई, और इस सूरत में इंसान गुनाहगार होगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक जो है वो एक मुबाह तसर्रुफ है, लिहाजा खावन चाहे एक तलाक दे चाहे दो दे चाहे तीन दे ये उसकी मर्जी है। इसलिए क्योंकि तलाक क्या है, मशरूअ है, शरीयत ने इजाजत दी है खावन को, और मशरूअ चीज ममनूअ हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम जवाब देते हैं कि तलाक जो है असल तो उसके अंदर मुमानियत है, क्योंकि तलाक की वजह से वो निकाह टूट जाता है जिस निकाह की दुनियावी मसलहतें भी थी और उखरवी मसलहतें भी थी। उखरवी मसलहतें क्या कि इंसान जिना से और गुनाह वगैरह से महफूज हो जाता है, और दुनियावी मसलहतें क्या हैं कि घर आबाद हो जाता है, उसे औलाद हासिल होती है, घर का निजाम चलाएगा, औलाद की तरबियत करेगा, तो ये सारी मसलहतें निकाह के अंदर हासिल होंगी भाई। तो चूंकि तलाक की वजह से ये निकाह टूट जाएगा इसलिए तलाक के अंदर असल मुमानअत ही है कि तलाक जायज नहीं है। लेकिन बाज औकात खावन बीवी से छुटकारे का मोहताज होता है, बीवी ऐसी बद अखलाक है, ऐसी बद जुबान है कि वह इसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, तो वह मोहताज होता है जुदाई का, छुटकारे का, तो इसलिए शरीयत उसको तलाक की इजाजत देती है। और जरूरत एक तोहर में एक तलाक के जरिए पूरी हो जाती है, लिहाजा एक तोहर में एक से ज्यादा तलाक जायज नहीं होगी। तो फिर अहनाफ पर इश्काल होता है कि जब जरूरत एक तलाक से पूरी हो जाती है तो फिर तलाक हसन को भी बिदअत कहना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक तलाक से जब हाजत पूरी हो रही है तो तीन तोहरों में तीन तलाकें देने की क्या हाजत है भाई, छुटकारा ही हासिल करना है। एक से भी छुटकारा मिल जाता है और तीन से भी छुटकारा मिल जाता है, तो जब एक से जरूरत पूरी हो रही है तो तीन तोहरों में तीन तलाकें देने की क्या हाजत है। तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि एक तलाक देने के बावजूद फी जाती ही हाजत बाकी रह सकती है। एक तलाक तो दे दी लेकिन फिर भी हाजत बाकी रह सकती है कि खावंद की हाजत यह है कि मैं औरत को तीन तलाकें दे दूं ताकि कहीं बाद में दोबारा मैं इसकी तरह माइल ना हो जाऊं और दोबारा इसे निकाह ना कर लूं। ये तो ऐसी औरत है, इसके साथ तो गुजारे की कोई सूरत नहीं, तो लिहाजा उसको अभी भी हाजत है कि वो तीन तलाकें पूरी कर दे ताकि उसका जहन उस औरत की तरफ मुतवज्जे ही ना हो, वहां निकाह की सूरत ही बाकी न रहे। और नीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह को जवाब दिया कि भाई एक चीज मशरू हो उसके बावजूद वो ममनू भी हो सकती है गैर के एतबार से, अपनी जात के एतबार से तो मशरू हो लेकिन गैर की वजह से ममनू हो, ऐसा हो सकता है। जैसे तलाक अपनी जात के एतबार से तो मशरू है कि इसमें औरत से गुलामी खत्म हो जाती है, इसमें इजाला रिकियत है क्योंकि निकाह के अंदर औरत के लिए गुलामी वाला माना है कि वो खावंद की पाबंद हो जाती है, उस पर बहुत सी पाबंदियां आ जाती हैं, यहां तक कि वो खावंद की इजाजत के बगैर घर से भी नहीं निकल सकती। तो जब खावंद तलाक देगा तो इससे इजाला रिकियत होगा, वो गुलामी खत्म हो जाएगी। और गुलामी का खत्म करना ये तो फीसाती ही मशरू चीज है, इसमें तो कोई बुराई और खराबी नहीं। तो बात चल रही थी कि तलाक अपनी जात के एतबार से तो मशरू है क्योंकि इसमें इजाला रिकियत है, लेकिन गैर की वजह से इसमें मुमानियत आ सकती है। जैसे इस तलाक की वजह से निकाह टूटेगा और निकाह की जो दुनियावी और दीनी मसलहतें थी वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो एक चीज अपनी जात के एतबार से मशरू हो और गैर के सबब से ममनू हो, ऐसा हो सकता है भाई। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि तलाक के अंदर सुन्नत दो एतबार से है, एक अदद के एतबार से और एक वक्त के एतबार से। अदद यह है कि एक ही तलाक दी जाए और इसके अंदर मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। सुन्नत तरीका क्या है, एक वक्त में एक ही तलाक दी जाए। और गैर मदखूल बिहा जिसे खावंद ने सोहबत नहीं की, मैंने आपको बतलाया था उसको खावंद एक ही तलाक देगा तो वो फौरन बाइना हो जाएगी और वो जहां चाहे फौरन आगे निकाह कर सकती है, जबकि मदखूल बिहा जो है वो इद्दत गुजारेगी। अब खावन चाहे इसी एक तलाक पर इक्तफा कर ले तलाक अहसन पर, और अगर चाहे तो हर तोहर में एक एक तलाक दे दे और इस तरह तलाक हसन पर अमल कर सकता है वो। और दूसरी सुन्नत जो है तलाक के अंदर वो वक्त के अंदर है और वो सिर्फ मदखूल बिहा के अंदर है भाई, किसके अंदर, मदखूल बिहा, कि उसको तोहर के अंदर तलाक दे और एक ऐसे तोहर में जिसमें उससे सोहबत नहीं की भाई। जबकि गैर मदखूल बिहा जो है उसको तोहर के अंदर भी तलाक दे सकता है और हैज के अंदर भी तलाक दे सकता है। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं गैर मदखूल बिहा जो है उसको भी तोहर में तलाक देनी पड़ेगी, सुन्नत तरीका यही है। अगर हैज में उसको तलाक देगा तो यह तलाक बिदअत हो जाएगी, वजह यह कि हैज तो नफरत का जमाना है भाई, तो हो सकता है इस आरजी नफरत की वजह से वह तलाक दे रहा हो। तो उसका जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि जो गैर मदखूल बिहा है जिससे खावन ने अभी सोहबत ही नहीं की, उसके अंदर तो खावन की रगबत बड़ी कामिल है, हत्ता के हैज की वजह से भी यह रगबत कम नहीं होती क्योंकि अभी तक खावन ने उससे सोहबत नहीं की, तो उसके अंदर रगबत कामिल है। चाहे तोहर का जमाना हो चाहे हैज का जमाना हो, खावन तलाक देगा तो रगबत के बावजूद तलाक दे रहा है, मालूम हुआ खावन को हाजत है, लिहाजा वो तलाक दे सकता है। और फिर आपको साहिब हिदाया ने यह मसाला बतलाया कि अगर औरत को हैज नहीं आता सिगर की वजह से, यानी अभी वो बालिगा ही नहीं हुई, या औरत को हैज नहीं आता कि वो कबीरा है, मैंने बतलाया कि 50-55 साल की उम्र में हैज बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद औरत से औलाद मुमकिन नहीं रहती, जब तक उसको हैज आ रहे हैं औलाद का इहतमाल है, और जब अब हैज खत्म तो उसके बाद अब औरत औलाद को जन्म नहीं दे सकती। तो अगर एक औरत 50-55 साल की उम्र तक पहुंच गई है और उसके हैज बंद हो गए हैं तो इसको आयसा कहते हैं, क्या कहते हैं, आयसा, यानी ये ना उम्मीद हो गई है, अब आगे इसकी औलाद नहीं हो सकती। तो अगर औरत सगीरा है अभी उसको हैज नहीं शुरू हुए, वो अभी बालिगा ही नहीं हुई, और या वो आयसा है तो इनको तो हैज नहीं आता, तो फिर इनको अगर तलाक सुन्नत देनी हो तो कैसे शुमार करेंगे। तो बतलाया कि इनके अंदर एक एक महीने के फर्क के साथ तीन तलाकें खावंद दे तो ये तलाक सुन्नत हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इन औरतों के हक में महीना जो है वो हैज के कायम मकाम है। जैसे कोई मालिक बांदी खरीदता है तो बांदी के साथ फौरन सोहबत करना उसके लिए जायज नहीं है, बल्कि एक हैज इंतजार करना पड़ेगा, इसको इस्तिबरा कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्तिबरा, यानी रहम की सफाई तलब करना कि बांदी का रहम साफ है इसका पता चल जाए, ये कहीं साबिका मालिक से हामिला तो नहीं, तो ये इस्तिबरा के अंदर एक हैज इंतजार वाजिब है। लेकिन अगर बांदी सगीरा है या आयसा है, अब उसको तो हैज नहीं आ रहा, तो फिर इंदल अहनाफ वहां एक माह इंतजार करना पड़ेगा मालिक को। तो देखो महीने को हैज का कायम मकाम कर दिया गया, लिहाजा तलाक सुन्नत के अंदर भी महीने को हैज का कायम मकाम कर दिया जाएगा और खावन एक एक महीने के फर्क के साथ तीन तलाकें बीवी को दे सकता है, तलाक सुन्नत भाई। उसके बाद आखिर में फिर साहिब हिदाया ने यह मसला जिक्र फरमाया कि अगर खावन तलाक सुन्नत देना चाहता है बीवी को और जिस दिन चांद नजर आया है उसी दिन वो बीवी को तलाक दे देता है, तो अब ये जो महीनों का फर्क है ये चांदों के साथ एतबार करेंगे, हर नए चांद पर खावंद इसको अगली तलाक दे दे, चाहे वो महीना 29 वाला हो चाहे 30 वाला हो
जी।
तो किसका एतबार करेंगे? चांद का एतबार करेंगे। हर चांद जब नजर आए वो औरत को अगली तलाक दे सकता है, दरमियान में एक महीने का फसल आ गया, चाहे ये महीना 30 का हो चाहे 29 का। इमाम साहब और साहिबैन सबके नजदीक मसला इसी तरह है। और अगर खावन ने महीने के दरमियान में किसी वक्त तलाक दी है और वो तलाक सुन्नत देना चाह रहा है तो इस सूरत में भी हमारे तीनों अइम्मा का इत्तेफाक है कि अब दिनों का हिसाब लगाया जाएगा, यानी 30-30 दिन के फर्क से खावन तलाक देगा, 30-30 दिन के फर्क से खावन तलाक देगा। जबकि इद्दत के मसले में इख्तिलाफ करते हैं साहिबेन और इमाम साहिब। इमाम साहिब के नजदीक तो इद्दत का मसला भी इसी तरह है, इद्दत का मसला भी इसी तरह है, यानी इस किस्म की औरत को खावन ने तलाक दे दी है और इसको तो हैज आता नहीं तो इसकी इद्दत कैसे शुमार करेंगे? तो इमाम साहब क्या फरमाते हैं, अगर महीने की पहली तारीख को तलाक दी है तो अगले तीनों महीने जो चांद के हैं, इमाम साहब भी यही फरमाते हैं, साहिबैन भी यही, कि अगर महीने की पहली तारीख को तलाक दी है तो चांद के एतबार से जब तीन महीने पूरे हो जाएं, चाहे वो 29 वाले महीने हो चाहे 30 वाले महीने हो, तो उस औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी। अलबत्ता इद्दत के मसले में साहिबैन इख्तिलाफ करते हैं इमाम साहिब से, उस सूरत में जब खावंद ने महीने के दरमियान तलाक दी हो। इन औरतों की इद्दत शुमार करनी है, खावन तलाक देता है, अब इनकी इद्दत महीनों के साथ है, तो इमाम साहिब और साहिबैन के नजदीक बिल इत्तेफाक अगर खावन ने जिस दिन चांद नजर आया है उसी दिन तलाक दी है तो फिर ये चांदों के साथ महीने शुमार करेंगे, चाहे महीने 30 दिन वाले हुए चाहे 29 दिन वाले हुए, तो तीन महीने जब पूरे हो जाएंगे चांद के तो औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर खावन ने दरमियान महीने के अंदर तलाक दी है और इद्दत शुमार करनी है तो फिर इस सूरत में इमाम साहब के नजदीक 30-30 दिन शुमार करेंगे, तो मालूम हो औरत को 90 दिन गुजारना पड़ेंगे फिर उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, ये आयशा और सगीरा की। जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, यहां पर पहला महीना जो है उसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं, खावन ने दरमियान में तलाक दी है, मसलन 10 दिन गुजर चुके हैं और फिर खावन ने तलाक दी है
जी।
तो आगे इस महीने के दिन शुमार करेंगे, मसलन आगे ये महीना 29 का हुआ, कितने का हुआ, तो 10 दिन तो पहले गुजर गए थे, 19 दिन ये इस महीने के गुजार लिए, इसने 29 का महीना है, अगले दोनों चांद के जो महीने हैं वो पूरे औरत शुमार कर लेगी और फिर आखिरी महीने के अंदर जो पहले महीने में कमी रह गई थी उसको पूरा कर लेंगे। 19 दिन पहले गुजार चुकी है, 11 दिन उस महीने में आखिरी महीने में मजीद गुजार लेगी, तो इस तरह तीसरे महीने के भी 30 दिन पूरे हो जाएंगे। तो साहिबे हिदाया ने बतलाया कि ये जो इद्दत के मसले में साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है ये इजारात का मसला है। इजारात यानी किराए पर कोई चीज लेना, मसलन एक शख्स किसी आदमी से कोई मकान किराए पर लेता है, मसलन 3 महीने 4 महीने 5 6 महीने जितने के लिए भी वो किराए पर लेता है, तो फिर इन महीनों का शुमार कैसे करेंगे? तो अगर महीने की पहली तारीख को उसने किराए पर मकान लिया है तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइम्मा के नजदीक इस्लामी महीनों के साथ यानी चांद के एतबार से ये महीने शुमार किए जाएंगे, जिस दिन चांद नजर आया है उसी दिन ये इजारे का अकद किया है कि मसलन मैं 5 महीने के लिए यह मकान किराए पर लेता हूं और चांद की पहली तारीख को यह अकद किया है, तो लिहाजा चांद के एतबार से ही यह महीने शुमार होंगे, चांद के एतबार से ही महीने शुमार होंगे, चाहे 29 दिन वाले हों चाहे 30 दिन वाले हों। तो इस तरह 5 महीने पूरे हो जाएंगे तो यह अकद पूरा हो जाएगा। तवज्जो है। तो इमाम साहब भी यही फरमाते हैं और साहिबैन भी यही फरमाते हैं, अगर पहली तारीख को अकद इजारा किया कि चांदों का हिसाब करेंगे, और अगर महीने के दरमियान में अकद इजारा किया है मसलन 5 महीने का, तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं अब दिनों के साथ इसका हिसाब करेंगे, यानी हर महीना 30 दिन का शुमार करेंगे, अब चांद की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अकद कब किया है, महीने के दरमियान में किया है, 3 तारीख को है, 5 को है, 10 को है, 15 को है, या 20 को है, जिस तारीख को भी है, लेकिन यकम तारीख को नहीं है, पहली तारीख को नहीं है। तो हर महीना 30-30 दिन का शुमार करेंगे। ये किसके नजदीक है? इमाम साहिब के नजदीक, जब अकद दरमियान महीना में किसी वक्त किया हो। और जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, यहां पर भी ये जो दरमियान वाले महीने हैं वो चांद के शुमार होंगे, अलबत्ता जो पहला महीना है जो दरमियान महीने के अंदर आकद किया है उसके दिन शुमार कर लेंगे। मसलन आकद किया 15 को, किसको? 15 तारीख को आकद किया, तो इस महीने के 15 दिन किस में गुजर गए? आकद में गुजर गए। तवज्जो है। अगले महीने से हम फिर चांद के साथ शुमार करेंगे, और वो चांद के चाहे 29 वाले महीने हो चाहे 30 वाले, वो 4 महीने दरमियान वाले आ गए और 15 दिन पहले थे, तो आखिरी महीने के अंदर फिर 15 दिन बाकी हैं अभी, तो वहां 15 दिन मजीद पूरे कर लेगा, तो ये 30 दिन इस तरह पूरे कर लेगा। दरमियान वाले महीने चांद के हो गए और ये जो चंद अयाम शुरू और आखिर में हैं इनको मिलाकर 30 दिन पूरे कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये इख्तिलाफ इजारा के अंदर है इमाम साहेब और साहिबैन में, तो यहां पर भी इसी तरह इख्तिलाफ है इस इद्दत के मसले में भी। बात समझ में आ गई क्या? कि अगर औरत को तलाक दी है महीने के बिल्कुल शुरू में और ये आयसा या सगीरा है, तो इद्दत किस तरह शुमार करेंगे? बिल इत्तेफाक चांद के साथ ये इद्दत शुमार होगी, चांद के जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो इद्दत पूरी हो जाएगी, चाहे ये महीने 29 वाले हुए चाहे 30 वाले हुए। और अगर दरमियान महीने में तलाक दी है तो इमाम साहब के नजदीक अब दिनों का हिसाब करेंगे, हर महीना 30 दिन का शुमार करेंगे, तो 90 दिन के बाद इस औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस पहले महीने में से जितने दिन रह गए थे वो आखिरी महीने में जाकर पूरे कर लेगी, और दरमियान वाले इस्लामी महीने शुमार होंगे, वो चाहे 29 के हों चाहे 30 के हों, तो शुरू और आखिर वाले दिन मिलाकर वो 30 दिन अलग पूरे कर लेंगे और दरमियान वाले इस चांद के महीने शुमार कर लेंगे। अब आइए आज के सबक पर। قال ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان। वो औरत जिसको हैज आता है उसको खावन तलाक देना चाहता है, तो आपने पढ़ा ऐसे तोहर में तलाक देगा जिसके अंदर सोहबत न की हो खावंद ने, और इस तोहर से पहले हैज गुजरा, हैज के अंदर भी सोहबत नहीं, मालूम है पिछले तोहर में खावंद ने सोहबत की थी, पिछले तोहर में खावंद ने सोहबत की थी, तो मालूम हुआ सोहबत और तलाक के दरमियान एक हैज का फर्क आ गया, एक हैज बीच में फासिल आ गया। तवज्जो है। खावंद कौन सी तलाक देना चाहता है? सुन्नत तलाक। तो किस तोहर में तलाक देगा? जिसमें सोहबत न की हो। मालूम अब खावंद ने जो सोहबत की थी वो पिछले तोहर में की थी, और उस सोहबत और ये जो तलाक दे रहा है इन दोनों के दरमियान क्या आ गया? हैज का फर्क आ गया, दरमियान में हैज फासिल आ गया। तवज्जो है। तो लिहाजा जब वो औरत जिसको हैज आते हैं उसको खावन तलाक देना चाहता है, तो सोहबत और तलाक के दरमियान एक हैज का फर्क जरूरी होगा जी। एक हैज का फर्क जरूरी होगा। तो अब अगर ये जो सगीरा या आयसा है इनको तो हैज नहीं आता, तो अगर इनको तलाक सुन्नत देना चाहता है तो कब तलाक दे? तो याद रखो हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि सोहबत करते ही फौरन भी तलाक दे सकता है। खामन ने इस असगीरा या आयसा से क्या कर ली? सोहबत कर ली और फिर उसके फौरन बाद तलाक देना चाहता है तो तलाक दे सकता है। फौरन तलाक दे दे, फिर 30 दिनों के बाद दूसरी तलाक दे दे, फिर 30 दिनों के बाद तीसरी तलाक दे दे। तरीका समझ में आ रहा है? तो वो औरत जिसको हैज आता था, वहां सोहबत और तलाक के दरमियान कितना फर्क जरूरी था? एक हैज का फर्क, लेकिन यहां कोई महीने का फर्क डालने की जरूरत नहीं। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, यहां भी फर्क डालना पड़ेगा, यहां भी फर्क होना चाहिए। जब हैज वाली के अंदर एक हैज का फर्क जरूरी था सोहबत और तलाक के दरमियान, तो यहां भी सोहबत और तलाक के दरमियान हैज का फर्क होना चाहिए। लेकिन हैज तो इसको आता नहीं है, और इस औरत के अंदर आपने हमें बताया है महीना किसके कायम मकाम है, हैज के कायम मकाम है, लिहाजा यहां एक महीने का फर्क डालना पड़ेगा खावन को। सोहबत की है तो अब पूरा एक महीना इंतजार करे, उसके बाद तलाक दे, तो यह सुन्नत तरीका है भाई। बात समझ में आ गई? तो हमारे नजदीक सोहबत के फौरन बाद भी इनको तलाक दे सकता है खावन, और फिर अगली तलाक देना चाहता है तो एक महीने के बाद, और फिर अगली तलाक देना चाहता है तो एक महीने के बाद। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं कि सोहबत और तलाक के दरमियान एक महीने का फर्क होना चाहिए भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयजूज अयुतल्लिका, और जायज है कि खावंद इसको तलाक दे। किसको तलाक दे? ये जिनकी पीछे बात चल रही है, आयसा या सगीरा, जिनको हैस नहीं आता। और जावयजूज अयुतल्लिका, और जायज है कि खावंद इसको तलाक दे। वला यफसिलु बैन वत इहा व तलाकिहा भी जमानिन, और कोई फर्क ना करे इसकी सोहबत और इसकी तलाक के दरमियान जमाने का, यानी सोहबत के फौरन बाद भी इनको तलाक दे सकता है। वकाल जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं यफसिलु बैनहुमा बिशहरीन, के वती और तलाक के दरमियान एक महीने का फसल करेगा। लिकियाम ही मकाम अल हैजी, इसलिए क्योंकि ये जो महीना है ये हैज के कायम मकाम है इन औरतों के हक में। वली अन्न बिल जिमाई तफ्तुरु रगबतु, इमाम जुफर फरमाते हैं कि भाई खावंद ने इनसे सोहबत की तो सोहबत की वजह से रगबत कम हो गई। तो जब रगबत कम हो गई तो कहीं ऐसा ना हो खावंद इस आरजी आदम रगबत की वजह से तलाक दे रहा हो, उसको हाजत ही नहीं है। हाजत तो तब होगी जब रगबत के नया होने का जमाना होगा, जब रगबत के नया होने का जमाना होगा। और उसका अंदाजा कहते हैं उलमा ने एक माह के साथ लगाया है कि फितरत सलीमा हो तो एक माह में उसकी फिर रगबत हो जाती है सोहबत के अंदर। फितरत सलीमा हो तो एक माह के अंदर फिर रगबत हो जाती है सोहबत के अंदर। तो यहां पर लिहाजा ये आयशा या सगीरा के साथ खावन ने सोहबत कर ली, जब सोहबत कर ली तो खावन की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो आरजी आदम में रगबत आ गई, अब उसकी रगबत ना रही, अब लिहाजा इसको तलाक की इजाजत नहीं होगी क्योंकि अभी इसको हाजत नहीं, ये आरजी आदम में रगबत है। असल हाजत का तब पता चलेगा जब एक महीना गुजर गया जिसके अंदर रगबत दोबारा नहीं हो जाती है और फिर भी खावन तलाक पर पेशकदमी करे, अब हम कहेंगे मालूम हो इसको हाजत है, मालूम हो इसको हाजत है, उससे पहले हाजत नहीं है। तो कहते हैं वली अन नबिल जिमाई तफ्तुरु रगबतु, और इसलिए क्योंकि सोहबत कर लेने की वजह से रगबत कम हो जाती है। वह इन नमा ततजद्दद बि ज़मानिन, और रगबत जो है वो कुछ जमाने के बाद नई होती है। वह हुआ शहरु, और वो एक महीना है। फितरत सलीमा हो तो एक माह के अंदर फिर सोहबत की रगबत होगी भाई। वलाना, और हमारी दलील यह है अन्नहु ला युतवहमुल हबलु फीहिमा, कि इन दोनों के अंदर हमल का वहम नहीं हो सकता। हबल भाई बा के फतहा के साथ, यह हमल को कहते हैं। अगर बा साकिन हो हबलुन, हबलुन यह रस्सी को कहते हैं, और अगर बा पर फतहा हो हबल तो यह हमल को कहते हैं। हम जवाब देते हैं कि हैज वाली जो औरतें हैं उनके बारे में शरीयत ने हुक्म दिया है कि उस तोहर में तलाक दो जिसमें सोहबत न की हो भाई। वजह यह कि सोहबत कर लेने के बाद अगर खावन तलाक देगा तो फिर औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी, क्योंकि खावन ने सोहबत की है, हो सकता है औरत हामिला हो चुकी हो, तो अगर हामिला हो गई है तो इसकी इद्दत वज़ए हमल है, और अगर हामिला अभी भी नहीं हुई तो इसकी इद्दत तीन हैज हैं। तो जब सोहबत के बाद खावन तलाक देगा तो इब्तिदाअन औरत पर इद्दत मुश्तबे हो गई, उसको पता ही नहीं मैं किसके साथ इद्दत शुमार करूं। हां जब आगे चलकर हैज वगैरह आएंगे फिर उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैं हामिला नहीं हूं, लेकिन फिलहाल तो उस पर इद्दत क्या हो गई, मुश्तबे हो गई कि मैं किसके साथ अपनी इद्दत शुमार करूं। भाई बात समझ में आ गई। लिहाजा इसलिए शरीयत ने मना किया है कि वो तोहर जिसमें खावंद सोहबत कर ले उसमें तलाक न दे अपनी बीवी को। भाई तो इस तोहर के अंदर जिसमें खावंद ने बीवी से सोहबत कर ली है इसमें तलाक के नापसंदीदा होने की वजह क्या है, ताकि कहीं औरत पर इद्दत मुश्तबे न हो जाए। भाई जबकि ये जो सगीरा है और या जो आयसा है यहां तो हमल का इहतमाल ही नहीं है, लिहाजा इसलिए सोहबत के फौरन बाद भी तलाक दे सकता है। हैज वाली में सोहबत के फौरन बाद तलाक देना क्यों मना था, ताकि कहीं औरत पर इद्दत मुश्तबे ना हो जाए, लेकिन इन औरतों में तो हामिला होने का कोई इहतमाल नहीं है जो सगीरा और आयसा हैं, लिहाजा इनको तलाक दे सकता है सोहबत के फौरन बाद भी खावंद। भाई वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु ला युतवहमुल हबलु फीहिमा, कि इन दोनों के अंदर यानी आयसा और सगीरा के अंदर हमल का वहम नहीं हो सकता। वल कराहियतु, और सोहबत के बाद तलाक का नापसंदीदा होना, फी जवातिल हैज़ी, हैज वालियों में भी एतबारी ही इसी हमल के एतबार से था। हैज वालियों में सोहबत के फौरन बाद तलाक देना नापसंदीदा इसी हमल के एतबार से था कि कहीं वो हामिला ना हो चुकी हो। भाई तो ये माना है वल कराहियत फी ज़वातिल हैज़ी बेतबार ही, और सोहबत के फौरन बाद तलाक का मकरूह होना नापसंदीदा होना हैज वालियों में बेतबार ही इसी हमल के वहम के एतबार से था। लिअन्ना इंदा ज़ालिका यश्तबिहु वजहुल इद्दति, इसलिए क्योंकि उस वक्त औरत पर इद्दत की वजह मुश्तबे हो जाएगी, उसे पता नहीं चलेगा मैं किस तरह इद्दत शुमार करूं। वर रगबतु व इन कानत तफ्तुरु मिन अलवजहि अल्लज़ी ज़करा लकिन तकसुरु मिन वजहिन आखर, और इमाम जुफर क्या फरमाते थे कि ये जो आयसा और सगीरा है इसके साथ भी जब खावन सोहबत कर लेगा तो रगबत कम हो जाएगी, लिहाजा इसलिए अभी तलाक न दे क्योंकि कहीं इस आर्जी आदम रगबत की वजह से या रगबत की कमी की वजह से वो तलाक न दे रहा हो। भाई तो हम उसका जवाब देते हैं कि नहीं, कि ये जो आयसा और सगीरा है अगर जे इसमें जिस सोहबत कर ली है और ख्वाहिश पूरी हो गई है खावन की तो बई एतबार रगबत कम हो जाएगी, लेकिन एक और एतबार से देखें तो खावन की रगबत इनमें बढ़ रही है, और वो क्या कहते हैं इनके हामिला होने का कोई खतरा नहीं जी। क्योंकि बाज औकात बच्चे की मशक्कत से बचते हुए खावन सोहबत से एतराज करता है क्योंकि बच्चे की परवरिश कोई आसान काम नहीं है, तो बच्चे की मशक्कत से बचने के लिए खावंद बाज़ औकात क्या करता है सोहबत से एहतराज करता है, लेकिन ये जो आयसा और सगीरा हैं इनके तो हामिला होने का कोई इहतमाल नहीं, लिहाजा बई एतबार खावंद की रगबत इनमें ज्यादा होगी। बात क्या चल रही है, खावंद ने इनसे सोहबत कर लिया और अब फौरन तलाक देना चाहता है तो क्या हमारे नजदीक फौरन तलाक दे सकता है? इमाम जुफर फरमाते हैं फौरन तलाक नहीं दे सकता, बल्कि तलाक सुन्नत देनी है तो एक महीने के बाद तलाक देना पड़ेगी। हम कहते हैं नहीं, फौरन भी तलाक सुन्नत दे सकता है और यह तलाक सुन्नत ही होगी, तलाक बिदअत नहीं। वजह यह कि अगरचे इस सोहबत की वजह से रगबत कम हो गई है लेकिन दूसरे एतबार से देखा जाए कि इन औरतों में तो हामिला होने का खतरा नहीं, लिहाजा बई एतबार खावन की रगबत बढ़ रही है भाई, लिहाजा इनको सोहबत के फौरन बाद भी खावन तलाक दे तो ये तलाक सुन्नत ही है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वर्रक बतु इन कानत तफ्तुरु मिन अलवजहि अल्लज़ी ज़करा, और रगबत अगरचे वो कम हो रही है उस वजह से जो इमाम जुफर ने जिक्र कर दी कि सोहबत कर ली है, सोहबत के बाद रगबत क्या हो जाती है कम, तो सोहबत करने की वजह से अगरचे रगबत कम हो रही है लेकिन तकसुर मिन वजहिन आखरा, लेकिन यह रगबत बढ़ रही है एक दूसरे एतबार से, लिअन्नहु यरगबु फी वत्इन गैर मुअल्लिकिन, इसलिए क्योंकि खावन जो है वो रगबत करता है फी वत्इन ऐसी वती में गैर मुअल्लिकिन जो उलूक वाली ना हो। उलूक उलू का माना है औरत का हामिला होना, औरत के हमल ठहर जाना, इसको क्या कहते हैं उलूक। तो खावन ऐसी वती के अंदर रागिब होता है जो उलूक वाली ना हो भाई, जिसकी वजह से औरत को हमल ना ठहरे भाई, तो बाई एतबार खावन की रगबत इसमें बढ़ रही है कि यहां कोई हमल का खतरा नहीं। तो कहते हैं लिअन्नहु यरगबु फी वत्इन गैर मुअलिक़िन, इसलिए क्योंकि खावन जो है वो रगबत करता है ऐसी वती के अंदर जो उलूक वाली ना हो। फिरारन अन मुअनिल वलदी, मुअन जमा है मुअनतुन की, मशक्कत को कहते हैं। फिरारन अन मुअनिल वलदी, औलाद की मशक्कत से भागते हुए, औलाद की मशक्कत से भागते हुए। मैंने बताया औलाद की परवरिश कोई आसान काम नहीं है भाई, औलाद की परवरिश मुश्किल है, खुसूसन आजकल के जमाने में तो खर्चे ही बहुत ज्यादा हो गए। तो लिहाजा कहते हैं लिअन्नहु यरगबु फी वत्इन गैर मुअलिक़िन, इसलिए क्योंकि खावन जो है वो रागिब होगा ऐसी वती के अंदर जो उलूक वाली ना हो। फिरारन अन मुअनिल वलदी, औलाद की मशक्कतों से भागते हुए यानी उनसे बचते हुए। फकान जमानु जमान रगबती, तो ये सोहबत के फौरन बाद का जमाना भी रगबत वाला ही जमाना है। खावन ने अगरचे सोहबत कर ली है लेकिन फिर भी यह कौन सा जमाना है? रगबत वाला, क्योंकि यहां पर वती गैर मौलिक है भाई। बात समझ में आ गई? तो फकान जमान जमान रगबती, तो ये जिमा के फौरन बाद वाला जमाना भी इन में दोनों के अंदर रगबत वाला जमाना है। फसारा का जमान इल्हबली, तो ये इसी तरह हो गया जैसे कि हमल का जमाना हो। याद रखो हामिला के अंदर, हामिला के अंदर बिल इतफाक हमारे अइमा के नजदीक वहां सोहबत के फौरन बाद भी खावन तलाक दे सकता है, वहां सोहबत के फौरन बाद भी खावन तलाक दे सकता है। आज के साहिब हिदाया भी जिक्र करने वाले हैं, एक शख्स की बीवी है वो हामिला है, ये शख्स उससे सोहबत करता है और सोहबत के फौरन बाद तलाक सुन्नत देना चाहता है, तो यहां दरमियान में एक महीने का वक्फा जरूरी नहीं बल्कि फौरन भी तलाक दे सकता है। तो जैसे हामिला के अंदर सोहबत और तलाक के दरमियान एक महीने का फर्क जरूरी नहीं, इसी तरह आयशा और सगीरा के अंदर भी सोहबत और तलाक के दरमियान एक महीने का फसल जरूरी नहीं है भाई। तो फसारा का जमानिल हबली, तो ये जमाना भी किसकी तरह हो गया? हमल के जमाने की तरह हो गया, और उसमें जैसे सोहबत के फौरन बाद तलाक दे सकते हैं, यहां इनमें भी सोहबत के फौरन बाद तलाक दे सकते हैं। आगे देखिए व तलाकुल हामिली यजूज अकीबल जिमाई, और हामिला की तलाक जायज है जिमा के बाद, जिमा के फौरन बाद हामिला को क्या कर सकता है? तलाक दे सकता है भाई। देखिए पीछे मसला शुरू किया था व इदा कानतिल मरअतु ला तहीजु मिन सिगरिन अव किबरिन, अगर औरत ऐसी है कि उसको हैज नहीं आता सगीरा या कबीरा होने की वजह से, ये सारे उनके मसले चल रहे हैं, और हामिला भी ऐसी औरत है जिसको हैज नहीं आता
जी।
जिसको हैज नहीं आता, तो उसका भी यही हुक्म है, उसका भी यही हुक्म है, यानी उसको खावन तलाक सुन्नत देना चाहता है तो एक एक महीने के फर्क के साथ तीन तलाकें दे सकता है
जी।
तो उसका भी यही हुक्म है, लेकिन साहिब कुदूरी ने बिलखसूस जो है इस हामिला के मसले को अलग जिक्र फरमाया, अगरचे पीछे था वैदा कानतिल मरअतुल्ला तहीजु मिन सिगरिन औ किबरिन, इस किबर के अंदर आयशा भी दाखिल थी और हामिला भी दाखिल थी, लेकिन फिर हामिला के हुक्म आगे अलग बाकायदा जिक्र कर रहे हैं। वजह यह कि इस हामिला के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं
जी।
इस हामिला में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं, आयशा और सगीरा में तो वो इत्तेफाक करते हैं कि इनको अगर कोई तलाक सुन्नत देना चाहता है तो कितने कितने फर्क के साथ तलाक दे? एक एक महीने के साथ। आयशा और सगीरा को कोई तलाक सुन्नत देना चाहता है तो एक एक महीने के फर्क के साथ तलाक देगा, लेकिन हामिला के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हामिला को सिर्फ एक ही तलाक देंगे ये सुन्नत है, इससे ज्यादा देंगे तो वो तलाक बिदअत बन जाएगी। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि हामिला का भी वही हुक्म है जो आयशा और सगीरा का था, और वहां जैसे सुन्नत तलाक एक एक महीने के फर्क के साथ तीन तलाकें खावन दे सकता है, तो इसके अंदर भी एक एक महीने के फर्क के साथ खावन तीन तलाकें दे सकता है और यह तलाक सुन्नत है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हामिला के अंदर सिर्फ तलाक अहसन सुन्नत है, यहां तलाक हसन दे ही नहीं सकता, वह बिदत हो जाएगी। तो चूंकि हामिला के मसले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इख्तिलाफ फरमाते थे शेखैन से, इसलिए इसको अलहदा जिक्र किया, वरना तो इसको अलहदा जिक्र करने की कोई हाजत नहीं थी, क्योंकि इसका भी वही हुक्म है जो आयसा और सगीरा का है। भाई तो कहते हैं वह तलाकुल हामिली यजूज अकीबल जिमाई, और हामिला की तलाक जायज है जिमा के पीछे यानी जिमा के बाद। भाई साहिब कुदूरी फरमा रहे हैं वह तलाकुल हामिली, हामिला की तलाक, हामिला औरत होती है लेकिन यहां हामिला तुन नहीं कहा, भाई ता गोल ता साथ नहीं मिलाई। वजह यह कि मैं पहले बयान कर चुका हूं यह ऐसी सिफत है जो खास है औरतों के साथ, यानी सिर्फ औरत ही हामिला होती है, इसी तरह औरत ही को सिर्फ हैज आता है, या इसी तरह औरत ही को सिर्फ तलाक दी जाती है। तो ये सब सिफात जो सिर्फ औरत के साथ खास हैं, वहां फिर गोलता मिलाने की जरूरत भी नहीं। तो लिहाजा यहां पर हामिलुन हाइजुन और तालिकुन वगैरह चूंकि ये सिर्फ औरत की सिफात हैं, लिहाजा इनमें गोलता को भी साथ मिलाने की हाजत नहीं। गोलता किससे मिलाई जाती है? मुजक्कर मुअन्नस में फर्क के लिए, और यहां तो मुजक्कर में यह सिफत ही नहीं पाई जाती, लिहाजा यहां गोलता मिलाकर फर्क की भी हाजत नहीं। तो कहते हैं वल तलाकुल हामिली यजूजु अकीबल जिमाई, और हामिला की तलाक जायज है जिमा के बाद। लिअन्नहु ला युअद्दी इल इश्तिबाहि वजहिल इद्दती, इसलिए क्योंकि यह नहीं पहुंचाएगा इद्दत की वजह के मुश्तबे होने की तरफ। हामिला के साथ अगर खावन जो है सोहबत करेगा तो इससे इद्दत मुश्तबे नहीं होगी। हामिला की इद्दत क्या है? हामिला की इद्दत वज़ए हमल है, जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी अगर खावन तलाक दे चुका है। वो औरत जिसको हैज आते हैं उसके साथ अगर खावन सोहबत कर ले तो उसी हैज में तलाक देने की इजाजत नहीं। क्यों इजाजत नहीं? क्योंकि औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी, पता नहीं कि यह हामिला हुई है या हामिला नहीं। अगर हामिला हुई है तो इद्दत वज़ह हमल हो चुकी है, और अगर हामिला नहीं हुई तो इद्दत तीन हैज हैं, तो सोहबत के बाद तलाक देगा वहां पर, तो औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी। लेकिन हामिला के अंदर अगर सोहबत के बाद भी तलाक देगा तो इद्दत मुश्तबे नहीं, क्योंकि यह औरत तो पहले से ही हामिला है भाई, इसलिए यहां पर इद्दत मुश्तबे नहीं, तो इसको सोहबत के फौरन बाद तलाक दे सकता है। तो कहते हैं लिअन्नहु ला युअद्दी इल इश्तिबाहि वजहिल इद्दती, इसलिए क्योंकि ये सोहबत जो है ये नहीं पहुंचाएगी इद्दत की वजह के मुश्तबे होने की तरफ, की इद्दत मुश्तबे हो जाए औरत पर ऐसा नहीं होगा। व ज़मानुल हबली ज़मानुर रग़बति फिल वत्ई, और नीस इसी तरह यह हमल का जो जमाना है ये भी रग़बत का जमाना है। फिल वत्ई किसके अंदर? वती के अंदर। लिकौनी ही गैरा मौलिकिन, इसलिए क्योंकि ये वती भी उलूक करने वाली नहीं है। भाई बीवी तो पहले से ही हामिला है, अब अगर सोहबत करेगा तो फिर वो मजीद कोई हामिला नहीं होगी, वही एक हमल जो पहले से चल रहा है वही है भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ अब जब औरत हामिला हो चुकी तो अब जो वती करेगा वो गैर मौलिक है, उसकी वजह से मजीद औरत कोई हामिला नहीं होगी, और खावन जो है गैर मौलिक वती के अंदर रागिब होता है भाई। लिहाजा मालूम हुआ सोहबत के बावजूद फौरन तलाक दे सकता है, क्योंकि अभी भी रगबत कम नहीं हुई, क्योंकि यह वती गैर मौलिक है भाई। दलील समझ में आ रही है? तो कहते हैं वह जमान उल हबली जमान उर रगबत फिल वती, और हमल का जो जमाना है वह वती के अंदर रगबत का जमाना है। लिकौ नहीं गैरा मौलिकिन, इसलिए क्योंकि यह वती जो है वह उलूक करने वाली नहीं है। औ फीहा लिमकानी वलदी ही मीनहा, यह फीहा का आतफ है मां कबल में जो आया था फिल वती। वह जमान उल हबली जमान उर रगबत फिल वती, हमल का जमाना वो वती में रगबत का जमाना है। अब फिल वती को हटा दें और इसकी जगह फी हा रख दें। वह जमान उल हबल जमान उर रगबती फी हा, और ये जो हमल का जमाना है ये उस औरत में रगबत का जमाना है, ये उस औरत में रगबत का जमाना है, लि मकान वलदिही मिनहा ऐ लि वजूद वलदिही मिनहा। मैंने बताया ये मकान बमाने है, वजूद के साहिब हिदायत जगह जगह इस्तेमाल करते हैं, ये मकान मस्तर है। लि मकान वलदिही मिनहा ऐ लि वजूद वलदिही मिनहा, कि इस औरत से खावंद का बच्चा हो रहा है, इस औरत से क्या होगा, खावंद की औलाद पैदा होगी। तो इस एतबार से खावन की मोहब्बत बीवी से बढ़ जाएगी कि यह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है
जी।
तो लिहाजा दो वजह जिक्र कर दी कि यह जो हमल का जमाना है यह रगबत का जमाना है, किस चीज में, वती में, या यह उस औरत में रगबत का जमाना है क्योंकि वह इस खावन के बच्चे की मां बनने वाली है, तो खावन की मोहब्बत उससे तबान बढ़ जाएगी भाई
जी।
तो कहते हैं औफीहा, या ये जो हमल का जमाना है ये उस औरत में रगबत का जमाना है, ले मकानी वलदिही मिनहा, बवजह इसके कि उस औरत से उस खावंद का बच्चा जो है वो होगा, फला तकिल्लु रगबत बिल जिमाई, तो लिहाजा सोहबत करने से भी रगबत कम नहीं होगी, सोहबत करने से भी रगबत कम नहीं होगी। भाई देखिए, या तो सोहबत के फौरन बाद तलाक देने से इसलिए मना किया गया था, हैज वाली औरत जो है, हैज वाली औरत में सोहबत के फौरन बाद तलाक देने से क्यों मना किया गया, ताकि कहीं औरत पर इद्दत मुश्तबे न हो जाए, और नीज वहां पर सोहबत की वजह से आर्जी तौर पर रगबत कम हो चुकी है, लिहाजा कहीं इस आर्जी आदम रगबत की वजह से वो तलाक ना दे दे, तो शरीयत ने मना कर दिया। जबकि हामिला जो है उसके साथ तो अगर सोहबत करेगा भी तो इससे औरत के इद्दत में कोई इश्तिबा पैदा नहीं होगा, और नीस अगरचे इससे खावन सोहबत कर लेता है फिर भी ये जो सोहबत है ये गैर मौलिक है और इसमें खावन की रगबत होगी, और नीज इस औरत के पेट में खावन की औलाद है, लिहाजा उसकी वजह से भी खावन की इस औरत से रगबत होगी। मालूम हुआ ये जो हामिला है इससे खावन सोहबत कर भी ले फिर भी उसकी रगबत में कमी न आई
जी।
जब रगबत में कमी न आई तो रगबत के होते हुए ये तलाक पर इकदाम कर रहा है, मालूम हुआ इसको तलाक की हाजत है, और जब हाजत है तो इसके लिए तलाक देना जायज है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वयुतल्लिकुहा लिस्सुन्नति सलासन यफसिलु बैन कुल्लि तत्लीकतैन बिशहरिन इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह। अब वो इख्तिलाफ का बयान आ गया कि हामिला को अलग क्यों जिक्र किया, कि इसके अंदर तलाक सुन्नत देना चाहते हैं, तो शेखैन फरमाते हैं एक एक महीने के वक्फे से तीन तलाकें दे दे हामिला को, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं हामिला को सिर्फ तलाक अहसन दे सकता है, एक तलाक दे दे बस, और उसके बाद वज़ए हमल तक इद्दत पूरी होने दे, यहां तलाक सुन्नत देना जायज नहीं है। तो अब वो फर्क बयान करने लगे, कहते हैं वह युतल्लिकुहा लिस्सुन्नति सलासन, और इस हामिला को खावन तलाक दे सकता है लिस्सुन्नति सुन्नत तरीके पर, सलासन कितनी तलाकें, तीन तलाकें दे सकता है, यफसिलु बैन कुल्ली तत्लीकतैन बिशहरिन, हर दो तलाकों के दरमियान एक महीने का फर्क करे, इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक, وقال محمد رحمه الله لا يطلقها للسنة إلا واحدة। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खावंद इसको सुन्नत तरीके पर तलाक नहीं दे सकता, इल्ला वाहिदतन, मगर एक ही तलाक। لأن الأصل, अब जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं لأن الأصل في الطلاق الحظر, इसलिए क्योंकि तलाक के अंदर असल ممانعت है, وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة, और नीज तहकीक शरीयत भी वारिद हुई है بالتفريق, के तलाकों में क्या की जाए, तफरीक की जाए, उनमें फसल किया जाए, على فصول العدة, इद्दत की फसलों पर, इद्दत की फसलों पर, फसूल इद्दत से मुराद वो चीज है जिसके जरिए इद्दत को शुमार किया जाता है, इद्दत की फसलें यानी जिनके जरिए इद्दत को शुमार किया जाता है। तो हैज वालियों में इद्दत को किससे शुमार करते हैं, हैज से, तीन हैज गुजरेंगे तो उसकी इद्दत पूरी, और आयसा और सगीरा के अंदर इद्दत को किससे शुमार करते हैं, महीनों के साथ, तीन महीने पूरे तो उनकी इद्दत भी पूरी, तो यह इद्दत की फसलें हैं। हैज वाली में इद्दत की फसलें हैज, और आयशा और सगीरा में इद्दत की फसलें महीने हैं भाई। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं लिअन्न अल असल फी तलाक अल हज़्र, कि असल जो है तलाक के अंदर मुमानअत है। वक़द वरद अश्शरउ बितफरीक अला फुसूल अल इद्दती, और तहकीक शरीयत वारिद हुई है कि तलाक के अंदर तफरीक की जाए, जुदाई की जाए, अला फुसूल अल इद्दती, इद्दत की फसलों पर। वह शहर फी हक हामिल लैस मिन फुसूलिहा, और महीना जो है यह हामिला के हक में इद्दत की फसलों में से नहीं है। हामिला के हक में महीना यह इद्दत की फसलों में से नहीं है। भाई देखो, हैज वाली में इद्दत की फसलें क्या हैं? हैज, तीन हैज आएंगे तो इद्दत पूरी हो गई। आयशा और सगीरा के अंदर इद्दत की फसलें क्या हैं? महीने, तीन महीने पूरे होंगे तो इद्दत पूरी हो जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं लेकिन ये जो हामिला है इसके हक में ये जो महीना है ये इद्दत की फसलें नहीं है। हामिला की इद्दत कितनी है? वज़ए हमल है, वहां कोई तीन महीने इद्दत नहीं है। तो मालूम हुआ हामिला के हक में ये महीने ये इद्दत की फसलें नहीं है। शरीयत ने तो क्या हुक्म दिया कि हर दो तलाकों के दरमियान फसूल इद्दत का फर्क होना चाहिए, इद्दत की फसल बीच में आनी चाहिए। देखो हैज वाली को तलाक सुन्नत देते हैं, किस तरह देते हैं? हर ऐसे तोहर में तलाक देते हैं जिसमें सोहबत न की हो, फिर हैज बीच में आ गया यानी इद्दत की फसल आ गई, फिर अगले तोहर में एक तलाक दे दी, फिर उसके बाद एक फसल आ गई, फिर उसके बाद एक तलाक दे दी। तो देखो बीच में इद्दत की फसलें आ रही हैं। और इसी तरह वो औरतें जिनके अंदर महीना इद्दत की फसल है वहां पर भी एक तलाक देता है खावन और फिर पूरा महीना इंतजार करता है फिर अगली तलाक देता है, तो दो तलाकों के दरमियान देखो इद्दत की फसल यानी एक महीना पूरा आ गया। लेकिन हामिला के हक में तो महीना इद्दत की फसल नहीं, हामिला की इद्दत तो वज़ए हमल है भाई, यहां महीनों के साथ इद्दत शुमार नहीं। तो जब महीनों के साथ यहां इद्दत नहीं शुमार, हामिला के हक में जब महीना इद्दत की फसलों में से नहीं है तो यहां तलाक सुन्नत की कोई सूरत नहीं। अगर आप महीने बाद भी दूसरी तलाक देंगे तो दरमियान में तो इद्दत का फसल ना आया, और हालांकि जरूरी क्या था, इद्दत की फसल बीच में आए, लेकिन महीना तो हामिला के लिए इद्दत की फसल नहीं है, लिहाजा यहां फसल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी इद्दत तो वज़ए हमल है। और एक तलाक भी देगा, जैसे ही वज़ए हमल होगा औरत की इद्दत खत्म, और जैसे ही इद्दत उसकी खत्म होगी वो बाइना हो जाएगी, वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। तो यहां दूसरी तलाक का इहतमाल ही नहीं है सुन्नत तरीके पर। वैसे तो देना चाहे बिदअत तो दे सकता है, लेकिन सुन्नत तरीके पर यहां दूसरी तलाक का इहतमाल नहीं, क्योंकि दूसरी तलाक के लिए तफरीक चाहिए फसल इद्दत के साथ, और फसल इद्दत के साथ तो यहां तफरीक मुमकिन नहीं है भाई। तो कहते हैं वह शहरुफी हकिल हामिली लैस मिन फुसूलिहा, और महीना जो है वह हामिला के हक में इद्दत की फसलों में से नहीं है। फसार कल मुमतदती तोहरुहा, तो यह हामिला हो गई उस औरत की तरह जिसका तोहर लंबा हो गया हो। याद रखो ये जो हैज वाली औरत है ना, हैज वाली औरत, इसके अंदर मैंने आपको बतलाया हैज के दिन भी मुकर्रर होते हैं और तोहर के दिन भी मुकर्रर होते हैं। 28, 29 या 30 दिन का मसलन एक दायरा चलता रहता है। हर महीने मसलन 7 दिन हैज है तो 7 दिन ही हर महीने हैज आएगा, और तोहर के अगर 22 दिन हैं तो हर महीने तोहर के 22 दिन ही शुमार होंगे। तो ये जो हैज वाली औरत होती है इसमें तोहर के भी दिन मुकर्रर होते हैं और हैज के दिन भी मुकर्रर होते हैं। इसी तरह हमेशा ये दायरा चलता रहता है। लेकिन बाज औकात किसी बीमारी वगैरह की वजह से औरत का तोहर लंबा हो जाता है, उसको हैज आता ही नहीं, और फिर औरत परेशान होती है तो वो अपना इलाज वगैरह करती है कि क्या वजह, मुझे हैज क्यों नहीं आ रहा। तो हैज का ना आना ये भी बीमारी की अलामत है आम औरत के अंदर। मालूम हुआ बाज़ औकात ये तोहर लंबा हो जाता है, तोहर लंबा हो जाता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये हामिला के हक में महीना इद्दत की फसलों में से नहीं है। ये जो महीना है ये इद्दत की फसलों में से नहीं है हामिला के हक में। ये इसी तरह है जैसे एक औरत को खावन ने तलाक दे दी, अब वो अगली तलाक सुन्नत देना चाहता है, लेकिन ये तोहर लंबा हो गया, अब उसके बाद औरत को हैज ही नहीं आ रहा, तीन चार पांच या छह महीने गुजर गए, औरत को हैज ही नहीं आ रहा। तो कहते हैं जैसे इस औरत के अंदर जब तक अगला तोहर नहीं आएगा खावन तलाक सुन्नत नहीं दे सकता। यहां महीनों का एतबार नहीं करेंगे कि भाई अब तो तोहर आ ही नहीं रहा, पहले हैज आएगा फिर तोहर आएगा, लेकिन हैज आ ही नहीं रहा, तो अब यहां पर महीनों का एतबार नहीं करेंगे बल्कि अगले तोहर ही का इंतजार करना पड़ेगा। तवज्जो है? तो जैसे वो औरत जिसका तोहर लंबा हो जाए उसके हक में महीना इद्दत की फसलों में से नहीं, तोहर ही का एतबार करना पड़ेगा। तो लिहाजा इसी तरह यह हामिला के हक में भी महीना इद्दत की फसलों में से नहीं होगा। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं फसारा कल मुमतद्दत तोहरुहा, तो ये औरत ये जो हामिला है ये हो गई उस औरत की तरह अल मुमतद्दती के लंबा है तोहरुहा जिसका तोहर लंबा हो गया हो। वलहुमा, अब शेखैन रहमहुमल्ला की दलील आ गई। शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अनल इबाहत लिल्लतिल हाजती, कि ये जो शरीयत ने तलाक को मुबाह करार दिया है लिल्लतिल हाजती, ये किस वजह से? हाजत की वजह से, कि इंसान बाज़ात औरत से जान छुड़ाने का मोहताज होता है, तो इस वजह से शरीयत जो है तलाक को मुबाह करार देती है। वह शहरु दलीलुहा, और महीना जो है वो इस हाजत की दलील है। महीना क्या है? इस हाजत की दलील है। महीने के अंदर रगबत नई हो जाती है, लिहाजा हामिला के हक में भी ये महीना रगबत के नए होने की दलील है। और जब रगबत नई हो और फिर भी इंसान तलाक पर पेश कदमी करे, मालूम हुआ इसको हाजत है, मालूम हुआ इसको। तो हामिला के हक के अंदर भी इसी तरह होगा। ये एक महीना जो है रगबत के नए होने का जमाना है, एक महीना गुजर गया है और खावन फिर भी इसको तलाक देना चाहता है, मालूम हुआ खावन को हाजत है, हालांकि ये तो रगबत के नए होने का जमाना है। तो लिहाजा तो वो फिर इसको दूसरी तलाक भी दे सकता है, फिर एक महीना गुजरेगा, फिर रगबत के नए होने का जमाना है, लेकिन फिर भी ये तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, मालूम हुआ इसको हाजत है, जब हाजत है तो इसके लिए तलाक देना मुबाह हो गया, लिहाजा ये तीसरी भी तलाक दे सकता है इस हामिला औरत को। तो कहते हैं वलहुमा, शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अनल इबाहत लिल्लतिल हाजती, के तलाक का मुबाह होना यह हाजत की इल्लत की वजह से होता है। वह शहरु दलीलुहा, और महीना जो है वो इस हाजत की दलील है। कमा फी हकिल आयसती व सगीरती, जैसे कि आयसा और सगीरा के हक में यह महीना जो है हाजत की दलील है। वहां दाली अन्नहु जमानु तजद्दुदिर रगबती अला मा अलैहिल जिबिल्लतु सलीमतु, जिबिल्लत कहते हैं तबीयत को और फितरत को। जिबिल्लत किसे कहते हैं? फितरत और तबीयत को, यानी वो चीज जो अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर किसी की तबीयत में रखी हो उसको फितरत कहते हैं। जैसे ये परिंदों को आप देखते हैं कि जब इनके अंडे देने का वक्त आता है ये घोंसले बनाते हैं, शब और रोज लगे होते हैं और घोंसले बनाते हैं। अब ये घोंसले बनाने की तरबियत इनको किसी ने नहीं दी, इनको घोंसले बनाने की तरबियत किसी ने नहीं दी, अल्लाह ने इनकी तबीयत और फितरत में यह चीज रखी है भाई। और ऐसे ऐसे घोंसले बनाते हैं, बाज औकात आप देखते हैं कि बिल्कुल कमरे की तरह बंद होता है और एक तरफ एक सुराख होता है भाई, और सैकड़ों हजारों तिंकों को उन्होंने जोड़कर ऐसा बनाया होता है कि अगर आप खींचकर भी उसको खोलना चाहें तो नहीं खोल सकते भाई। तो देखो ये किसी ने उनको तरबियत नहीं दी, ये अल्लाह ने उनकी फितरत में रखा है भाई। इसी तरह जब अंडे देते हैं फिर कुछ दिन उसके ऊपर बैठ जाते हैं वो परिंदे भाई, अब देखो ये उनको किसने बताया नहीं कि इस तरह बैठना पड़ेगा, ये अल्लाह ने उनकी फितरत में ये चीजें रखी हैं। तो पैदाइशी तौर पर किसी की तबीयत में जो चीजें अल्लाह रख दें उसको क्या कहते हैं? फितरत कहते हैं भाई। तो जिबिल्लत का क्या माना? फितरत भाई, फितरत। तो कहते हैं वहादा ली अन्नहु जमानु तजद्दुदिर रगबती, इसलिए क्योंकि ये एक महीना जो है ये रगबत के नए होने का जमाना है। अला मा अलैहिल जिबिल्लतु सलीमतु, बिना पर उसके जिस पर फितरत सलीमा होती है। फितरत सलीमा यही है कि इंसान एक माह में दोबारा उसकी सोहबत में रगबत हो जाती है। फितरत सलीमा, सलीम सलीम से है, यानी जिसमें कोई मर्ज वगैरह ना हो, सही फितरत जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। वरना अगर किसी की ख्वाहिश ज्यादा है वो 10 दिन के अंदर ही उसको औरत की रगबत हो जाती है, कोई ऐसा खावंद है। तो याद रखो, मालूम हुआ ये फितरत सलीमा नहीं है। फितरत सलीमा तो ये है कि एक माह में रगबत होगी भाई। तो सलीम से क्या मुराद है? जो सलामत हो, किसी मर्ज वगैरह का उसमें दखल ना हो भाई। तो कहते हैं वहाद अली अन्नहु ज़मानु तजद्दुदिर रगबती, इसलिए क्योंकि ये एक महीना ये रगबत के नया होने का जमाना है। अलामा अलैहि जिबिल्लतु सलीमतु, बवजह उसके जिस पर फितरत सलीमा होती है। फसलुहा अलमं व दलीलन, लिहाजा ये एक महीना सलाहियत रखता है। अलमं व दलीलन, अलामत और दलील होने की। ये एक महीना सलाहियत रखता है कि यह अलामत बन जाए और दलील बन जाए। किस चीज पर? रगबत के नया होने पर। रगबत के नया होने पर इसको अलामत या दलील करार दिया जा सकता है। लिहाजा हामिला को एक तलाक दे दी और फिर एक महीना गुजर गया तो हम कहेंगे कि अब रगबत के नया होने का जमाना आ गया, और खावन फिर भी तलाक देना चाहता है, मालूम हो इसको हाजत है, और जब हाजत है तो इसके लिए तलाक देना जायज हुआ। लिहाजा ये दूसरी तलाक भी दे सकता है और इस तरह फिर तीसरी तलाक भी दे सकता है एक महीने के बाद। तो कहते हैं फसलुहा अलमं व दलीलन, तो लिहाजा ये महीना सलाहियत रखता है अलामत और दलील होने की। किस चीज की अलामत और दलील? हाजत की, कि इसको हाजत है भाई। एक महीने में रगबत नहीं हो जाएगी फिर भी ये तलाक पर इकदाम कर रहा है, मालूम हुआ इसको हाजत है, हालांकि ये तो रगबत के नया होने का जमाना है। तो फसलुहा अलमं व दलीलन, लिहाजा ये महीना जो है हाजत की अलामत और दलील होने की सलाहियत रखता है। बिखिलाफ अलमुमतद्दति तोहरुहा, बखिलाफ वो औरत जिसका तोहर लंबा हो गया हो। लिअन्न अलअलम फी हक़िहा इन्नमा हुवा तोहरु, इसलिए क्योंकि अलामत जो है रगबत के नए होने की जो अलामत है, फी हक़िहा उस औरत के हक में, इन्नमा हुवा तोहरु, वो तोहर ही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इस हामिला को किस पर कियास किया था? वो औरत जिसका तोहर लंबा हो जाए, और जिसका तोहर लंबा हो जाए वहां तो कोई महीनों का फर्क नहीं किया जाता, बल्कि तोहर ही का इंतजार करेंगे यहां तक कि फिर हैज आए और फिर अगला तोहर आए, फिर ही खावंद अगली तलाक दे सकता है, उससे पहले नहीं। महीने महीने के बाद तलाक देगा तो ये इस तलाक सुन्नत नहीं है भाई। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि जिस औरत को हैज आते हैं उसके हक में शरीयत ने तोहर जो है, हर तोहर को शरीयत ने रगबत की अलामत करार दिया है। हर तोहर में क्या हो जाएगी? खावंद की रगबत। लिहाजा उसके हक में अलामत तोहर ही है, उसके हक में अब दोबारा बदलकर महीना नहीं किया जा सकता भाई। ये माना है लिअन्न अलअलम फी हक़िहा इन्नमा हुवा तोहरु, बाकी अलामत किस चीज की अलामत? रगबत के नए होने की। बाकी रगबत के नए होने की जो अलामत है, फी हक़िहा इस औरत के हक में जिसका तोहर लंबा हो गया है, इन नमा हुआ तोहर, वो तोहर ही है, यानी तजद्दुद तोहर है कि नया तोहर आएगा, फिर ही हम कहेंगे कि रगबत नई हो गई। वो हुआ मरजूब उन फी हाफी कुल जमानीन, और ये जो तोहर है इसकी तो इस औरत में उम्मीद है, फी कुल जमानीन हर जमाने में। भाई एक औरत है उसका तोहर लंबा हो गया, खावंद अगली तलाक सुन्नत देना चाहता है लेकिन अगला तोहर ही नहीं आ रहा। कहते हैं बेशक तोहर ना आए, इसके अंदर रगबत के नए होने की अलामत शरीयत ने तोहर को करार दिया है, तो तोहर ही का इंतजार करेंगे। और नीज इस औरत के अंदर तोहर की उम्मीद भी है क्योंकि ये हैज वाली औरत है, तो किसी भी वक्त इसको हैज शुरू हो सकता है और फिर उसके बाद अगला तोहर आ सकता है। जबकि हामिला, जो हामिला को जो आप कयास कर रहे हैं इस औरत पर जिसका तोहर लंबा हो रहा है, आपका यह कयास सही नहीं है, इसलिए क्योंकि हामिला जो है वहां तो हैज आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। याद रखो, जब औरत हामिला हो जाती है तो हैज बंद हो जाता है, और जब तक बच्चे को जन्म न दे दे दोबारा हैज नहीं आता। फिर जब बच्चे को जन्म देगी फिर वह निफास का खून चंद दिन तक आता है, और फिर उसके बाद फिर उसी तरह हैज हर महीने शुरू हो जाता है। तो जब तक औरत हामिला है उसको हैज नहीं आता। तो लिहाजा ये औरत जिसका तोहर लंबा हो गया है, इसके अंदर हम महीनों को अलामत करार नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर अलामत क्या चीज है? तोहर है, और तोहर की हर वक्त इसके अंदर उम्मीद है कि हो सकता है आज हैज शुरू हो जाए और फिर फौरन ही तोहर भी आगे आ जाए। तो नए तोहर की तो इसमें हर वक्त उम्मीद है, लेकिन हामिला के अंदर तो किसी हैज की और फिर नए तोहर की उम्मीद नहीं है, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते भाई। हामिला जो है उसके अंदर तो महीने की तफरीक के साथ तलाक सुन्नत हो सकती है, लेकिन वो औरत जिसका तोहर लंबा हो गया हो उसके हक में तो महीने की तफरीक वो इद्दत की फसल नहीं हो सकती। बात भी समझ में आई कि नहीं? तो कहते हैं ली अन्नल आलम फी हकीहा इन्नमा हुआ तोहरू, इसलिए क्योंकि रगबत के नए होने की जो अलामत है इस औरत के हक में जिसका तोहर लंबा हो गया है, इन्नमा हुआ तोहरू वो, हां रगबत के नए होने की अलामत इसके अंदर वो तोहर ही है, वह हुआ मरजूबन फी हाफी कुल्ले जमानिन, और ये जो तोहर है इसकी तो इस औरत में उम्मीद है फी कुल्ले जमानिन हर जमाने में कि अभी इसको हैज आ जाएगा और फिर नया तोहर शुरू हो जाएगा। वला यूर्जा माल हबली, और हमल के साथ तो इसकी उम्मीद नहीं है, हमल के साथ तो इसकी उम्मीद नहीं, क्योंकि हबल वाली को तो हैज ही नहीं आता, हैज ही नहीं, तो वहां दोबारा फिर तोहर का भी कोई एहतेमाल नहीं। लिहाजा दोनों में फर्क आ गया, एक में तजद्दुद तोहर का एहतेमाल है, दूसरी में तजद्दुद तोहर का एहतेमाल नहीं, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। तो जिसमें तजद्दुद तोहर का एहतेमाल है उसके हक में रगबत की अलामत तोहर ही रहेगा, और जिसमें तजद्दुद तोहर नहीं है वहां पर महीने को रगबत की अलामत करार दिया जाएगा। फर्क समझ में आ गया? आगे देखिए, वइदा तल्लकर रजुल उम्रअतहु फी हालतिल हैज वकअत तलाक, और जब कोई शख्स तलाक देता है अपनी बीवी को फी हालतिल हैज हालत हैज में, वकअत तलाक तो तलाक वाकई हो जाएगी, अगरचे है कौन सी तलाक, तलाके बिदात है, लिअन्न नहय अनहु लिमानन फी गैरिहि, भाई देखो शरीयत ने तो मना किया है, शरीयत ने तो मना किया है कि हैज के अंदर तलाक नहीं देनी। भाई हदीस में आपने पढ़ा कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हैज की हालत में बीवी को तलाक दी थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और रुजू करने का हुक्म दिया। इससे दो बातों का पता चला, एक तो यह कि वह तलाक वाकई हो गई है, अगर वाकई न होती तो रुजू करने का क्या मतलब, तवज्जो है, हुजूर रुजू का हुक्म दे रहे हैं, मालूम हो वह हैज के अंदर तलाक वाकई हो गई, और नीज हुजूर नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं और रुजू करने का हुक्म दे रहे हैं, मालूम हुआ कि हैज में तलाक देना जायज नहीं है, मालूम हो शरीयत की तरफ से मना है भाई। तो कहते हैं लिअन्ना नहय अनहु लिमानन फी गैरिहि, इसलिए क्योंकि इससे जो मना किया गया है लिमानन फी गैरिहि वो एक ऐसे सबब की वजह से है जो इसके गैर में पाया जा रहा है, यानी तलाक तो फी जाती ही अपनी जात के एतबार से इजाला रिकियत है, जायज है, लेकिन वहां जो मना किया गया है हैज के अंदर वो किस वजह से मना किया गया है कि औरत पर इद्दत लंबी हो जाएगी। पीछे साहिब हिदायत ने बतलाया था कि अगर हैज के अंदर खावन तलाक देगा, हैज के अंदर तलाक देगा तो शवाफे के नजदीक इद्दत शुमार होती है तोहरों से, तो यह हैज जब गुजरेगा तो फिर उसकी इद्दत शुरू होगी। मालूम हुआ यह वाला हैज शवाफे के नजदीक भी इद्दत में शुमार नहीं, और हमारे नजदीक भी यह वाला हैज इद्दत में शुमार नहीं है, बल्कि अगले तीन हैज औरत गुजारेगी फिर जुदा होगी खावन से, तो औरत पर इद्दत क्या हो गई, लंबी हो गई, क्योंकि यह वाला हैज जिसमें खावन ने तलाक दी है ना हमारे नजदीक इद्दत में शुमार ना शवाफे के नजदीक इद्दत में शुमार है। तो शरीयत ने हैज के अंदर तलाक देने से मना किया है, क्यों मना किया है कि इसकी वजह से औरत पर इद्दत लंबी हो जाएगी, और नीज इसलिए भी क्योंकि हैज जो है वह तो औरत से नफरत का जमाना है, तो कहीं इस आरजी नफरत की वजह से खावन तलाक ना दे रहा हो, इसलिए शरीयत ने मना किया है। तो कहते हैं लि अन्न नहय अनहु, इसलिए क्योंकि हैज के अंदर तलाक देने से जो नहीं की गई है लिमानन फी गैरिही, ये एक ऐसे सबब की वजह से है जो इस तलाक के गैर में पाया जा रहा है, वह हुआ मा ज़करना, और वो है जो हमने जिक्र कर दिया। क्या वजह हमने जिक्र की थी, क्या इद्दत औरत पर लंबी हो जाएगी, यह हैज किसी के नजदीक भी इद्दत में शुमार नहीं जिस हैज के अंदर तलाक दी है, और नीज दूसरी वजह क्या जिक्र की कि हैज क्या है नफरत का जमाना है, तो कहीं इस आरजी नफरत की वजह से तलाक ना दे रहा हो। फलायन आदिमु मशरूयतहु, लिहाजा मादूम नहीं होगा इसका मशरू होना, हैज के अंदर तलाक दे रहा है तो तलाक अपनी जात के एतबार से ममनू नहीं है बल्कि गैर की वजह से ममनू है कि इसकी वजह से औरत की इद्दत लंबी हो रही है, औरत की इद्दत लंबी हो रही है इसलिए क्योंकि यह नफरत का जमाना है। तो लिहाजा मालूम हुआ हैज के अंदर जो तलाक से मना किया गया है वह तलाक की जात की वजह से नहीं मना किया गया बल्कि इद्दत के लंबा होने या नफरत का जमाना होने की वजह से मना किया गया है। तो खुद तलाक अपनी जात के एतबार से मशरू रहेगी यानी देगा तो वाकई हो जाएगी, अगरचे हराम काम किया लेकिन वाकई हो जाएगी। अगर अपनी जात के एतबार से तलाक ममनू होती तो फिर देने से भी वाकई ना होती, लेकिन तलाक अपनी जात के एतबार से ममनू नहीं बल्कि गैर की वजह से ममनू है। यह माना है फलायन आदिमु मशरूयतुहु, लिहाजा इस तलाक का मशरू होना मादूम नहीं होगा, इसका हुक्म फिर भी साबित हो जाएगा, जुदाई आ जाएगी। वही उस्तहब लहू अन युराजिअहा, और खावंद के लिए मुस्तहब यह है कि उससे रुजू कर ले। वो शख्स जिसने हैज के अंदर बीवी को तलाक दी है उसके लिए मुस्तहब यह है कि वो क्या कर ले, रुजू कर ले। ये साहिब कुदूरी फरमा रहे हैं कि खावंद के लिए रुजू करना मुस्तहब है। आगे साहिब हिदाया फरमाएंगे नहीं, ज्यादा सही कौल यह है कि रुजू करना खावंद पर वाजिब है, रुजू करना वाजिब है भाई। तो कहते हैं वही उस्तहब लहू अन युराजिअहा, और मुस्तहब है खावंद के लिए कि वो इस औरत से रुजू कर ले। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु लिउमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बवजह हुजूर अलैहि सलाम की जो आपने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया मुर इब्नका फल युराजिअहा, मुर इब्नका फल युराजिअहा। हजरत इब्न उमर ने हैज के अंदर बीवी को तलाक दी थी, हुजूर अलैहि सलाम नाराज हुए और हजरत उमर से फरमाया अपने बेटे को हुक्म दो कि वो रुजू कर ले। तो हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से मुर इब्नका कि अपने बेटे को हुक्म दो, फल युराजिअहा, चाहिए कि वो क्या कर ले, रुजू कर ले। वक़द तल्लक़हा फी हालतिल हैज़ी, और तहकीक हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपनी बीवी को तलाक दी थी हैज की हालत में। वहादा युफीदुल वुकूअ वल हस्सा अलर रजअती, और यह हदीस फायदा देती है दो चीजों का, एक क्या कि तलाक हो गई थी। वहादा युफीदुल वुकूअ, यह हदीस फायदा देती है तलाक के वाक़े होने का, जबी तो हुजूर फरमा रहे हैं रुजू कर ले, अगर तलाक वाकई ही ना होती तो रुजू करने का क्या मतलब। तो और नीज वल हस्सा अलर रजअती, और हस उनका माना है उभारना, सा है सा, वल हस्सा अलर रजअती, और रुजू पर उभारने पर। देखो हुजूर हुक्म दे रहे हैं कि अपने बेटे को हुक्म दो कि वो रुजू कर ले, तो मालूम हुआ इस हदीस में उभारा जा रहा है रुजू करने पर। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा युफीदुल वुकूअ वल हस्सा अलर रजअती, और यह हदीस फायदा देती है उस तलाक के हैज के अंदर वाकई होने का भी, वल हस्सा अलर रजअती, और रुजू पर उभारने का भी। सुम्मा लिस्तिहबाब कौलु बाज़िल मशायखी, फिर यह जो मुस्तहब होना है, यह जो रुजू का मुस्तहब होना है, कौलु बाज़िल मशायखी, यह बाज़ फुकहा का कौल है। वल असहु अन्नहु वाजिबुन, और ज्यादा सही कौल यह है कि यह रुजू वाजिब है, ये रुजू वाजिब है। अमलम भी हकीकतिल अमरी व रफअन लिल मासियति बिकद्रिल मुमकिन बिरफ़ असरिही वही अल इद्दतु व दफअन लिज़ररी तत्वीलिल इद्दती, तीन दलीलें देंगे साहिब हिदाया कि यह वाजिब है, रुजू करना वाजिब। एक दलील क्या कि हदीस के अंदर अमर का सीगा आया है फल युराजिअहा, ये कौन सा सीगा है, अमर, और अमर किस लिए आता है, वुजूब के लिए आता है, मालूम हुआ रुजू वाजिब है। और नीज नीज हैज के अंदर तलाक देना ये तो गुना है जी। ये तो गुना है और लिहाजा ये मासियत है, लिहाजा इस मासियत को खत्म किया जाए, जिस कदर हो सके इसको खत्म किया जाए जी। और ये तो खावंद ने तलाक दी है, तलाक की तो वापसी की कोई सूरत नहीं। हां उसका असर कम किया जा सकता है, किस तरह, रुजू कर ले, जब रुजू करेगा तो वो जो इस तलाक की वजह से इद्दत आ रही थी, वो जो इस तलाक का असर था वो खत्म हो जाएगा। तो तलाक को तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसके असर यानी इद्दत को तो हम खत्म कर सकते हैं, तवज्जो है। लिहाजा मासियत का असर भी बाकी रहे तो ये इसी तरह है जैसे मासियत बाकी है। लेकिन जब रुजू कर लेगा तो जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो मासियत का असर खत्म हो गया, तो जिस कदर हो सकता था हमने मासियत या उसके असर को खत्म करने की कोशिश की। और नीज तीसरा, औरत पर इद्दत भी लंबी नहीं होगी, औरत पर इद्दत भी लंबी नहीं होगी क्योंकि हैज के अंदर तलाक दी है, और यह हैज तो ना हमारे नजदीक इद्दत में शुमार है ना शवाफे के नजदीक इद्दत में शुमार है, तो खावंद रुजू कर ले और फिर दोबारा बाद में तोहर के अंदर उसको तलाक देना चाहता है तो दे सकता है भाई। तो कहते हैं वल असहु अन्नहु वाजिबुन, और ज्यादा सही यह है कि यह रुजू करना वाजिब है। देखा साहिब हिदायत फरमा रहे ज्यादा सही यह है कि यह रुजू वाजिब है। मालूम हुआ जो इस्तेहबाब वाला कौल है वो भी सही है लेकिन वजूब वाला कौल ज्यादा सही है। तो कहते हैं वला सहु अन्नहु वाजिबुन, और ज्यादा सही है यह कि रुजू वाजिब है। अमलन भी हकीकतिल अमरी, हकीकत अमर पर अमल करने के लिए। यह अमलन यह मफूल लहू है, मफूल लहू किसे कहते हैं, वो मस्दर जो माकबल फील की इल्लत बयान करता है। जरबत हूं तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की, तादीबन किस लिए, अदब सिखाने के लिए, तो यह माकबल फील की इल्लत बयान कर रहा है। तो यहां पर भी अमलम भी हकीकतिल अमरी, अमल करने के लिए किस पर, हकीकत अमर पर अमल करने के लिए। व रफ आन, यह दूसरी दलील आ गई, व रफ आन लिल मासियत बिकद्रिल मुमकिनी, और मासियत को उठाने के लिए बिल कद्रिल मुमकिनी, जिस कदर मुमकिन हो सके, बिरफ असर ही, कि उसके असर को उठा दिया जाए। मासियत को जिस कदर उठाया जा सके उठाया जाए, मासियत यानी तलाक तो खत्म नहीं हो सकती लेकिन उसका असर जो है उसको तो उठाना मुमकिन है। वही अल इद्दतु, और इस मासियत का असर क्या है, वो इद्दत है कि रुजू कर लेगा तो इद्दत खत्म हो जाएगी। वह दफा ली जररी तत्वील इल्लती, और नीज दफा करने के लिए इद्दत की तत्वील के जरर को, इद्दत की तत्वील का जरर औरत से दूर करने के लिए। तो देखो ये अमलन, रफअन और दफअन, ये तीनों मफूल लहू हैं जो माकबल की इल्लत बयान करें। ये रुजू वाजिब है, क्यों वाजिब है, क्योंकि एक तो हदीस के अंदर अमर का सीगा आया, और नीस ताकि मासियत का असर जो है वो खत्म हो जाए, यानी रुजू कर लेगा तो इद्दत खत्म हो जाएगी, और नीस ताकि औरत से इद्दत की तत्वील का जरर दूर हो जाए। जब रुजू कर लेगा तो अब इद्दत की तत्वील का जरर क्या हो गया, दूर हो गया, वरना तो इद्दत लंबी हो रही थी। जी तर्जमा एक दफा फिर देख लीजिए, वल असहु अन्नहु वाजिबुन, और ज्यादा सही है यह है कि यह रुजू वाजिब है। अमलन भी हकीकतिल अमरी, हकीकत अमर पर अमल करने के लिए। वरफ अन लिल मासियति बिकद्रिल मुमकिनी, और नीज मासियत को खत्म करने के लिए, बिल कद्रिल मुमकिनी, जिस कदर मुमकिन हो सके, बिरफ़ असरी ही, उसके असर को उठाते हुए। वही अल इद्दतु, और इसका असर क्या है, वो इद्दत है। वदफ अन लि ज़ररि तत्वील अल इद्दति, और औरत से तत्वील इद्दत के जरर को दूर करने के लिए। قال فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت وإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها। अब भाई खावन ने रुजू कर लिया, अब इस औरत को जिसको उसने हैज में तलाक दी थी, अब इसको वो तलाक सुन्नत देना चाहता है, तो कब तलाक दे, तो आपको बताएंगे। हमारे बास वो कहा फरमाते हैं कि ये हैज गुजर गया, तोहर शुरू हो गया, इस तोहर के अंदर तलाक दे दे, इस तोहर में, तो ये ऐसा तोहर है जिसमें सोहबत नहीं की और ये सुन्नत तरीके पर तलाक हो गई। जबकि बाज फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, ये हैज गुजर गया जिसमें तलाक दी थी और रुजू कर लिया, ये हैज गुजर जाए, फिर तोहर आए, वो तोहर भी गुजर जाए, फिर अगला हैज आए, उस अगले हैज के बाद जो तोहर आएगा उसमें जाकर तलाक देगा, तो ये तलाक सुन्नत है। इस हैज में जिसके अंदर तलाक भी दी थी और रुजू कर लिया, इसके साथ वाले तोहर के अंदर तलाक न दे, बल्कि एक हैज और गुजरे और फिर उसके बाद जो अगला तोहर आए तो फिर तलाक देगा, तो ये तलाक सुन्नत होगी। बात समझ में आ गई। देखिए अब यह साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فاذا طهرت, جب یہ عورت پاک ہو جائے, دیکھو وہ حیض گزر گیا جس میں طلاق دی تھی, وحاضت, اور پھر کیا ہو جائے, حیض والی, پھر اس کو حیض آ جائے, ثم طهرت, پھر دوبارہ اس کو طہر آ جائے, فَأَبْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, اب چاہے تو اس کو طلاق دے دے اور اگر چاہے تو اس کو روک لے. قال رضی اللہ تعالی عنہ, یہ قال سے مراد صاحب ہدایہ خود ہیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں, وہاں کدا ذکر فی الاصل, کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اصل میں یعنی مبسوط میں اسی طرح ذکر فرمایا ہے کہ جس حیض میں طلاق دی ہے اس کے ساتھ والے طہر میں طلاق نہ دے بلکہ اگلے طہر میں طلاق دے. توجہ ہے, تو کہتے ہیں اس طرح ذکر فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اصل یعنی مبسوط میں. وذکر الطحاوی رحمہ اللہ, اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہ یطلقها فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی, ان یطلقها, کہ خاوند اس بیوی کو طلاق دے گا, فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی, اس طہر میں جو اس پہلے حیض کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی جس حیض میں طلاق دی تھی اس کے ساتھ والے ہی طہر میں کیا کر سکتا ہے, طلاق دے سکتا ہے, طلاق سنت. قال ابو الحسن الكرخي رحمه الله ما ذكر الطحاوي قول ابي حنيفه رحمه الله وما ذكر في الاصل قولهما. تو دیکھو امام محمد نے تو ذکر کیا تھا کہ ایک طہر چھوڑ کر اگلے طہر میں طلاق دے, اور امام طحاوی فرماتے ہیں اسی طہر میں طلاق دے سکتا ہے. تو امام ابو الحسن کرخی, امام کرخی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں فقہاء احناف میں سے, تو امام کرخی فرماتے ہیں کہ یہ جو امام طحاوی نے قول ذکر کیا یہ امام صاحب کا قول ہے, یہ امام صاحب کا قول ہے. اور اس کی وجہ بتلائیں گے کہ وجہ یہ ہے کہ خاوند نے اس حیض کے اندر طلاق دی تھی, لیکن خاوند نے جب رجوع کر لیا تو گویا وہ طلاق تھی ہی نہیں, وہ کل عدم ہے, اس کو شمار ہی نہ کرو کیونکہ خاوند نے کیا کر لیا, رجوع کر لیا, لہذا اب فوراً اگلے طہر میں وہ طلاق دے سکتا ہے. تو یہ جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اور وہ جو متن کے اندر صاحب قدوری نے ذکر کیا تھا کہ ایک طہر چھوڑ کر اگلے طہر میں طلاق دے تو وہ صاحبین کا قول ہے. تو کہتے ہیں قال ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ, امام ابو الحسن کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں, ما ذکر الطحاوی قول ابی حنیفہ رحم اللہ, کہ وہ جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے وہ امام صاحب کا قول ہے, وما ذکر فی الاصل قولهما, اور وہ جو اصل کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ صاحبین کا قول ہے, ووجہ المذکور فی الاصل, اور وہ وجہ جو ذکر کی گئی ہے اصل میں, اصل یعنی مبسوط میں تو کیا ذکر ہے, اگلے طہر میں طلاق دے, اس حیض کے ساتھ والے طہر میں طلاق نہ دے, اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں, وجہ المذکور فی الاصل, اور اصل کے اندر جو وجہ ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سنت ان یفصل بین کل تطلیقتین بحیض, کہ سنت یہ ہے ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فرق ہونا چاہیے, ایک حیض کا فرق, اور خاوند نے ایک حیض میں طلاق دی ہے وہ رجوع کر لیا, اب اگلے ہی طہر میں دوسری طلاق دے رہا ہے, تو یہ تو دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فصل نہ آیا, حالانکہ سنت تو کیا ہے ہر دو طلاقوں میں ایک حیض کا فصل آنا چاہیے. تو کہتے ہیں ان سنت ان یفصل بین کل تطلیقتین بحیضتین, سنت یہ ہے کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان جدائی کرے, بحیضتین ایک پورے حیض کا, والفاصل ہا ہنا بعض الحیضتی, اور یہاں پر جو فاصل اور فاصل بن رہا ہے وہ تو بعض حیض ہے پورا حیض نہیں ہے, لہذا فتکمل بالثانیۃ, اس حیض کو پورا کیا جائے گا دوسرے حیض کے ساتھ, اس حیض کو پورا کیا جائے گا دوسرے حیض کے ساتھ, مثلا اس حیض کے چند دن گزر گئے تو اگلے حیض کے بھی جب اتنے دن گزر جائیں گے تو اب یہ کچھ وہ پچھلا حیض کچھ یہ والا حیض, یہ کیا ہوا پورا حیض ہو گیا وہ, لیکن حیض کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی بھائی, لہذا اگلا پھر پورا ہی شمار کرنا پڑے گا, اس کا کچھ جز شمار نہیں, تو یہ مانا ہے فتکمل بالثانیۃ, لہذا اس حیض کو پورا کیا جائے گا دوسرے حیض کے ذریعے, ولا تتجزؤ, اور حیض تو تقسیم نہیں ہو سکتا, فتتکامل, تو وہ پورا ہوگا اگلا حیض, واذا تکاملت الحیضۃ الثانیۃ, اور جب دوسرا حیض پورا ہو گیا, فالطہر الذی یلیہ زمان السنتی, تو وہ طہر جو اس دوسرے حیض کے ساتھ ملا ہوا ہے, زمان السنتی, یہ سنت کا زمانہ ہے, فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهَا عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ, تو ممکن ہو گیا اس عورت کو طلاق دینا سنت کے طریقے پر کہ دوسرے طہر میں طلاق دے. وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ, اور دوسرے قول کی وجہ, وہ جو امام صاحب کا قول تھا کہ جس حیض میں طلاق دی ہے اور رجوع کیا ہے اس سے اگلے ہی طہر میں فوراً کیا کر سکتا ہے, طلاق سنت دے سکتا ہے. اس کی وجہ بھی ذکر کریں گے کہ اس لیے کیونکہ جب خاوند نے رجوع کر لیا تو گویا طلاق تھی ہی نہیں, گویا کہ طلاق تھی ہی نہیں, لہذا اس لیے اس طہر میں طلاق دے سکتا ہے. تو کہتے ہیں وجہ القول الآخری, اور دوسرے قول کی وجہ یہ ہے, وہ جو امام طحاوی نے ذکر کیا تھا امام صاحب کا قول, اس قول کی وجہ یہ ہے کہ ان اثر طلاق قد انعدم بالمراجعتی, کہ طلاق کا اثر تحقیق معدوم ہو گیا بالمراجعتی, رجوع کرنے کی وجہ سے, فصار کانہ لم یطلقها فی الحیض, تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ خاوند نے گویا اس عورت کو اس حیض میں طلاق دی ہی نہیں تھی. فیسن تطلیقها فی الطہر الذی یلیہ, تو لہذا مسنون ہوگا اس عورت کو طلاق دینا اس طہر کے اندر جس جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو قول راجح ہوتا ہے اس کی دلیل کو سب سے آخر میں ذکر فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی صاحب ہدایہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں, امام صاحب کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن محشی حضرات نے یہاں حدیث ذکر کی ہے, اور حدیث بھی صحیحین کی ہے, یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اور اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے, اس حدیث میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مریبنا کا فل یوراجعہ, یہی حدیث جو اوپر متن میں آئی تھی, حضرت عمر سے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو رجوع کرنے کا حکم دو, ثم یمسکھا, پھر بیٹا تمہارا اس بیوی کو روکے, حتی تطہرا, یہاں تک کہ بیوی پاک ہو جائے یعنی طہر شروع ہو جائے, ثم تحیضا, پھر اس کو حیض آ جائے, فتطہرا, پھر اس کے بعد پاک ہو جائے, فان بدا لہ ان یطلقها فلیطلقها قبل ان یمسکھا, تو پھر اس کے بعد خاوند کو اختیار ہے, چاہے تو اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. تو یہ صحیحین کی حدیث ہے, اور حدیث سے بھی وہی طریقہ معلوم ہو رہا ہے جو متن کے اندر ذکر تھا, جو صاحبین کا قول تھا. توجہ ہے, معلوم ہے سنت طریقہ یہی ہے کہ جس حیض میں طلاق دی تھی اور رجوع کیا تھا اس کے بعد ایک طہر انتظار کرے, اور پھر اگلے طہر کے اندر چاہے تو روک لے بیوی کو اور چاہے تو طلاق دے دے, تو یہ طلاق سنت ہوگی. بھائی آگے دیکھیے, وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ تَطْلِيقَةً. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا, اور یہ بیوی ذوات الحیض میں سے ہے یعنی حیض والیوں میں سے ہے, اس کو حیض آتا ہے اور خاوند اس کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہے, اس بیوی سے خاوند کہتا ہے انتی طالق ثلاثا لسنتی, تجھے تین طلاقیں ہیں لسنتی, سنت طریقے پر. اب دیکھو یہاں یہ عربی لفظ ہے انتی طالق ثلاثا لسنتی, تو اب آپ کو بتائیں گے صاحب ہدایہ کہ اس صورت میں اگر اس خاوند نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی. اس نے کتنی طلاقیں ذکر کی ہیں؟ تین, اور کس طریقے پر؟ سنت طریقے پر. اور سنت طریقہ کیا ہے طلاقوں کا, تین طلاقوں کا, کہ ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق دی جائے جس میں صحبت نہ کی ہو. تو اگر اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو ہر طہر میں ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی, اور یہ لام وقت کے معنی میں ہو جائے گا, انتی طالق ثلاثن لسنتی ای وقت سنتی, سنت کے وقت میں تمہیں تین طلاقیں ہیں, اور سنت وقت کون سا ہے؟ طہر ہے جس کے اندر خاوند نے صحبت نہ کی ہو. بھائی یہ تو وہ صورت تھی جب خاوند نے کوئی نیت نہیں کی, اور اگر خاوند نے تینوں کے اکٹھے واقع ہونے کی نیت کی ہے تو تینوں اکٹھی بھی واقع ہو جائیں گی, جبکہ امام زفر فرماتے ہیں تینوں اکٹھی واقع نہیں ہوں گی, اس لیے کیونکہ اس نے لس سنت کی قید ساتھ لگائی ہے, اور سنت طریقہ طلاقوں کا یہ نہیں ہے کہ اکٹھی تین ہو جائیں. लिहाजा तीन इकट्ठी वाकई नहीं होंगी, जबकि हमारे नजदीक तीन इकट्ठी भी वाकई हो जाएंगी। दलील देखिए भाई, कहते हैं वमन काल लिमरअतिही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा वही मिन ज़वातिल हैज़, हाल यह है कि औरत हैज वालियों में से है, यानी इसको हैज आता है, वक़द दखल बिहा, और तहकी खावंद इसे सोहबत भी कर चुका है, भाई इसके साथ सोहबत कर चुका है। अगर खावंद ने सोहबत नहीं की फिर तो एक ही तलाक से वो बाइना हो जाएगी भाई। तो कहते हैं वक़द दखल बिहा, और खावंद ने उसके साथ सोहबत कर ली है। खावंद ने क्या कहा, अंति तालिकुन सलासन लि सुन्नति, कि तुझे तीन तलाकें हैं सुन्नत तरीके पर, वला नीयत लहू, और खावंद की कोई नीयत नहीं है, फहिया तालिकुन इंद कुल्ली तोहरिन ततलीकतन, तो इस औरत को तलाक होगी हर तोहर के अंदर एक तलाक, लि अन लाम फीही लिल वक्ति, इसलिए क्योंकि ये जो लि सुन्नत के अंदर लाम आया है ये वक्त के लिए है। याद रखो कलाम अरब में लाम वक्त के माना में आम इस्तेमाल होता रहता है, तो यहां पर भी ये लाम किस माना में ले लेंगे, वक्त के माने में, अंति तालिकुन सलासन लि सुन्नति ऐ वक्त सुन्नति। तो कहते हैं लिअन्न लाम फीहि लिलवक्त, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो लाम है वो वक्त के लिए है, वह वक्त सुन्नति तोहरुन ला जिमा फीहि, और सुन्नत का वक्त जो है वो तो ऐसा तोहर है जिसमें जिमा न हो, वह इन नवा अंत का सलासुस्साता, और अगर खावन ने यह नीयत की कि तीनों तलाकें वाकई हो जाए असाता इसी घड़ी में, यानी इसी वक्त, औ इंद रसी कुल्ली शहरिं वाहिदतुन, या हर महीने के आगाज पर एक वाकई हो जाए, तो फ हुआ अला मानवा, तो फिर इस सूरत में यह उसी तरीके पर होगा जो उसने नीयत की है। अगर उसकी यह नीयत है इसी वक्त तीनों वाके हो जाए तो उसी वक्त तीनों वाके हो जाएंगी, और अगर उसने यह नीयत की है कि हर महीने के आगाज पर एक एक वाके हो, यानी जब चांद नजर आए तो एक वाके हो जाए, फिर दूसरी फिर तीसरी, अगर उसने यह नीयत की है तो हर महीने के आगाज पर एक एक तलाक वाके हो जाएगी, चाहे वह औरत हैज की हालत में हो चाहे तोहर की हालत, हर महीने के आगाज पर उस वक्त, चाहे औरत तोहर की हालत में हो चाहे हैज की हालत, उसी वक्त, क्योंकि उसने ये नियत की है तो उसी वक्त एक एक तलाक वाकई होती चली जाएगी जी। तो इस सूरत में अगरचे तीन तलाकें इकट्ठी हो गई ये गुनाहगार हुआ, या उसने हर महीने के आगाज की नियत की है तो उस वक्त अगर औरत हैज वाली है तो फिर तो ये गुनाहगार तो होगा, लेकिन बहरहाल जो इसने नियत की है उसी के मुताबिक तलाकें साबित हो जाएंगी। तो कहते हैं फहुआ अला मानवा, तो ये तलाकें वाकई होंगी उसी तरीके पर जो उसने नीयत की है, सवा उनका नतफी हालत हैजी और फी हालत तोहरी, बराबर है कि उस महीने के आगाज में वो औरत हैज की हालत में हो या तोहर की हालत में। वकाल जुफर रहमहुल्लाहुला तसिहु नीयतुल जमई, इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं जमा की नीयत सही नहीं, तीनों की इकट्ठी करने की नीयत सही नहीं, लिअन्नहु बिदअतुन, क्योंकि ये तो बिदअत है, वही जिद्दु सुन्नति, और बिदअत तो सुन्नत की जिद है, तो इसने जिक्र तो किया है सुन्नत को और इरादा है उसका बिदअत का, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, एक चीज के जरिए उसकी जिद का इरादा नहीं हो सकता। लफ्ज को कभी एक माना में इस्तेमाल किया जाता है कभी दूसरा माना में, और दूसरा माना मजाजी होता है, लेकिन वो मजाजी माना भी उस पहले माना के जिद नहीं होता भाई, वहां कोई रबत और ताल्लुक होता है जिद के अलावा, जिद के अलावा कोई रबत चाहिए होता है, लेकिन ये जो तीन तलाकों की इकट्ठा देने की नियत कर रहा है ये तो बिदअत है, और बिदअत तो सुन्नत की जिद है, और लफ्ज इसने सुन्नत जिक्र किया और इरादा बिदअत का कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, एक लफ्ज के जरिए उसकी जिद का इरादा नहीं हो सकता। तो इमाम जुफर फरमाते हैं ला तसिहु नीयतुल जमई, तीनों तलाकों के जमा की नीयत सही नहीं है, लिअन्नहु बिदअतुन, क्योंकि ये बिदअत है, वही जिद्दु सुन्नति, और बिदअत जो है वो तो सुन्नत की जिद है, वलना हमारी दलील ये है कि अन्नहु मुहतमलु लफ्जी ही, कि ये उसके लफ्ज का मुहतमल है, उसके लफ्जों का में एहतमाल है, अगरचे दूर का एहतमाल है लेकिन बहरहाल एहतमाल है। क्या उसने क्या कहा है, अंति तालिकुन सलासन लिसुन्नति, तो अंति तालिकुन सलासन को देखो जरा, ले सुन्नत को एक तरफ रख दो, अंति तालिकुन सलासन, तुम्हें तीन तलाकें हैं, तो इसमें तीन इकट्ठी भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं, तो तीन इकट्ठे होने का भी एहतमाल है और अलग होने का भी एहतमाल है। इस पर फिर आपके जहन में आएगा चलो अंति तालिकुन सलासन में तो तीनों के इकट्ठे होने का एहतमाल है, लेकिन ले सुन्नत की जो कैद आ रही है वो सुन्नत तलाक का तो क्या तरीका है कि हर दो तलाकों के दरमियान फ फसल होना चाहिए, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो उसका भी जवाब देते हैं कि भाई देखो, ये जो तीन तलाकों का इकट्ठा वाके होना है, ये भी सुन्नत तरीका है। क्या माना सुन्नत तरीका है? यानी ये तरीका भी सुन्नत से साबित है
जी।
ये तरीका भी सुन्नत से साबित है। देखो, वो मैंने हजरत रुकाना रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस आपको लिखवाई थी कि वो आए हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बीवी को तलाके बत दे दी है। तलाके बत, मैंने बताया बत उनका माना कतउन है, काटना। तो तीन तलाकों को भी तलाके बत कहते थे, यानी वो भी ताल्लुक को बिल्कुल तोड़ने वाली हैं। तो हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बीवी को तलाके बत दे दी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने क्या इरादा किया था? तो उन्होंने कहा मैंने एक का इरादा किया था। तो हुजूर ने फरमाया वल्लाह, यानी क्या तुम अल्लाह की कसम खाते हो? उन्होंने कहा वल्लाह कि हां या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे तुमने इरादा किया है उतनी ही, यानी एक ही तलाक है। तो अगर एक वक्त में तीन तलाकें इकट्ठी न हो सकती तो उनको कसम खिलाने की क्या जरूरत थी? तवज्जो है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हजरत रुकाना से कसम खिलवाना, ये इस बात की दलील है कि अगर तीन की नियत की जाए तो तीन तलाकें भी वाके हो जाती हैं एक ही मजलिस में। भाई, मालूम हुआ एक ही मजलिस में तीन तलाकों का वाके होना ये भी किससे साबित है? सुन्नत से। और हदीस के मैंने आपको नाम बतलाए थे, हदीस के कितने नाम है? चार: असर, खबर, सुन्नत, हदीस। तो सुन्नत भी किसका नाम है? हदीस का नाम है। तो मालूम हुआ वो जो खावन ने कहा अंति तालिकुन सलासन, तुझे तीन तलाके हैं, ले सुन्नती, सुन्नत के तरीके पर, यानी जो सुन्नत यानी हदीस से जो साबित है
जी।
तो लिहाजा तीन तलाकें वाके हो जाएंगी। और फिर याद रखना, एक है खावन का तलाक वाके करना, ता खावन तलाक वाके करता है और फिर वो तलाक वाके हो जाती है। तो वाके करना ये किसका काम है? खावंद का। वाके कर रहे हैं किसका काम है? खावंद का। और फिर तलाक क्या हो जाएगी? वाके हो जाएगी। तो बात चल रही है, खावन ने कहा था अंति तालिकुन सलासन लिस सुन्नती, तुझे तीन तलाकें हैं सुन्नत तरीके पर। तो ये जो तीन तलाकें इकट्ठी होंगी, ये ईका के एतबार से तो सुन्नत नहीं। ईका यानी खावन के वाके के करने के एतबार से तो ये सुन्नत नहीं, ये सुन्नत तरीका नहीं, लेकिन वुकूअ के एतबार से ये सुन्नत है, यानी सुन्नत से साबित है। यानी सुन्नत से साबित है। जबकि बाज़ों ने और भी जवाब दिया और कुतुब के अंदर, भाई वो फरमाते हैं कि ये अंति तालिकुन सलासन लिस सुन्नती, कि तुरे तीन तलाकें हैं सुन्नत तरीके पर, और ये जो तीन तलाकें हैं सुन्नत तरीके पर, यानी जो अहले सुन्नत के नजदीक तरीका है, अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक जो तरीका है, उस तरीके पर तुरे तीन तलाकें हैं और उसने तीन की नियत भी कर ली है। तो अहले सुन्नत वल जमात का तो यही मजहब है कि तीन तलाकें अगर इकट्ठी खावन देगा तो इकट्ठी वाके हो जाएंगी। भाई तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु मुहतमल लफ्ज़ ही, कि ये जो तीन इकट्ठी तलाकें हैं ये उसके लफ्ज का मुहतमल है, यानी उसके लफ्ज में इसका भी इहतमाल है। ले अन्नहु सुन्नी युन वुकूअन, इसलिए क्योंकि ये तीन इकट्ठी जो है तलाकें ये सुन्नी हैं, वुकूअन वुकूअ के एतबार से, ये वाके होने के एतबार से सुन्नी है। क्या मतलब? कहते हैं मिन हैसु इन्ना वुकूअहु बिसुन्नती, इस हैसियत से कि इनका वाके होना सुन्नत यानी हदीस से साबित है
जी।
हदीस से साबित है। ला ईकाअन, यानी ईका के एतबार से ये सुन्नी नहीं, इस तरह तलाक देना ये सुन्नत नहीं है, लेकिन इनका वाके होना ये सुन्नत से साबित है। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु सुन्नियुन वुकूअन, इसलिए क्योंकि ये तीन तलाकों का इकट्ठे वाके होना ये वुकूअ के एतबार से सुन्नी है। मिन हैसु इन्ना वुकूअहु बिसुन्नती, इस हैसियत से कि इनका वुकू सुन्नत से साबित है यानी हदीस से साबित है। ला ईकाअन, ये सुन्नी ईका के एतबार से नहीं है, यानी इस तरह वाके करना सुन्नत नहीं है, लेकिन वुकू तो सुन्नत है। फलम यतनावलहु मुतलकु कलामिही, लिहाजा इधर देखिए, अंति तालिकुन सलासन ले सुन्नती, इसमें तीन इकट्ठी तलाकों का भी इहतमाल है, लेकिन वो इहतमाल है सिर्फ, जहन उसकी तरफ फौरन नहीं जाता क्योंकि वो लिस सुन्नत का लफ्सा जिक्र कर रहा है, अंति तालिकुन सलासन लिस सुन्नति, तो तीन इकट्ठी होने का भी एहतमाल है। हमने आपको माना बयान कर दिया कि तीन इकट्ठी का वुकू भी किससे साबित है, सुन्नत से, तो तीन इकट्ठी वाके होने का भी एहतमाल है, लेकिन जहन फौरन इसकी तरफ नहीं जाता क्योंकि वो जो लिस सुन्नत का लफ्ज साथ आ रहा है उसकी वजह से तलाक के सुन्नत तरीके की तरफ जहन जाता है
जी।
तो इसलिए ये एहतमाल वैसे तो नहीं साबित होगा, लेकिन अगर उसने नीयत कर ली तो फिर नीयत कर ली तो फिर तीन इकट्ठी भी साबित हो जाएंगी, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज की नीयत की है जिसका उसके कलाम में एहतमाल भी था
जी।
कलाम में एक चीज का एहतमाल भी, एक माना का एहतमाल भी था और उसने वो नीयत भी बाकायदा कर ली, तो अब फिर उसी तरह साबित हो जाएगा। अगर वो नीयत न करता तो फिर जरा दूर का एहतमाल था, उस तरफ जहन न जाता क्योंकि लिस सुन्नत का लफ्ज जहन को उस तरफ जाने नहीं देता, लेकिन जब उसने तीन की नीयत कर ली आप तीन हो जाएंगी, क्योंकि तीन तलाकों का वाक होना भी किससे साबित है, सुन्नत यानी हदीस से साबित है। तो कहते हैं फलम यतनावल हु मुतलक कलाम ही, लिहाजा ये जो एहतमाल है तीन इकट्ठी तलाकों वाला उसका मुतलक कलाम तो इसको शामिल नहीं है, मुतलक कलाम इसको शामिल नहीं तीन इकट्ठी तलाकों को। तो कहते हैं फलम यतनावल हु मुतलक कलाम ही, लिहाजा इसको मुतलक कलाम तो इसका शामिल नहीं है तीन इकट्ठी तलाकों को, लेकिन वयन तजिमुहु इंद नीयति ही, लेकिन उसका कलाम इसको शामिल होगा उसकी नीयत के वक्त, जब वो नीयत कर लेगा तो फिर साबित हो जाएगी। वह इनकानत आयसतन औ मिन ज़वातिल अशहूरी, और अगर वो औरत जो है वो आयसा है, भाई जिसको खामन ने क्या कहा, अंति तालिकुन सलासन ले सुन्नती, पहले तो औरत कौन सी थी, हैज वाली, तो अब अगर आयसा है या सगीरा है उसको यूं कहा है तो फिर क्या हुक्म होगा, अब वो बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं वह इन कानत आयसतन औ मिन ज़वातिल अशहूरी, और अगर वो औरत जो है वो आयसा है या महीनों वाली है यानी सगीरा, मुराद है सगीरा मदखूल बिहा, ज़वात अशहूर से क्या मुराद है, सगीरा मदखूल भी हा, जो है तो सगीरा लेकिन खावंद उसे सोहबत कर चुका है, नाबालिगा है लेकिन खावंद उसे सोहबत कर चुका है। मसलन एक शख्स का निकाह हुआ था एक सगीरा के साथ, और अब ये सगीरा बालिग तो नहीं हुई, बालिग होने के करीब है, बालिग तो नहीं हुई लेकिन बालिग होने के करीब है, और इससे खावंद ने सोहबत कर ली फिर, तो जब खावंद ने इसके साथ सोहबत कर ली और फिर खावंद इसको क्या कहता है, अंति तालिकुन सलासन ले सुन्नती, तवज्जो है, तो अब क्या होगा। तो कहते हैं वह इन कानत आयसतन, और अगर वो औरत आयसा है, औ मिन ज़वातिल अशहूरी, या महीनों वाली है, लेकिन मैंने बताया कौन सी महीनों वाली है, सगीरा मदखूल बिहा, मदखूल बिहा की कैद हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर गैर मदखूल बिहा हुई तो उसको तो एक ही तलाक से वो जुदा हो जाएगी, किससे, एक से, और हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, तीन तलाकों के वाके होने की। तो कहते हैं औ मिन ज़वातिल अशहूरी, या वो सगीरा थी मदखूल बिहा, वकअति साअत वाहिदतुन, तो उसी घड़ी एक तलाक फौरन वाके हो जाएगी। आयसा या सगीरा मदखूल बिहा को खावन ने क्या कहा, अंति तालिकुन सलासन ले सुन्नति, तो एक तलाक उसी वक्त वाके हो जाएगी
जी।
एक तलाक उसी वक्त, क्यों, क्योंकि हैज वाली के लिए तो तलाक का एक मखसूस जमाना था यानी तोहर, लेकिन इनके लिए तो कोई मखसूस जमाना नहीं, लिहाजा एक फौरन वाके हो जाएगी, फिर 30 दिन के बाद दूसरी, और फिर 30 दिन के बाद तीसरी। तो कहते हैं वकअति साअता वाहिदतुन, तो उसी घड़ी एक वाके हो जाएगी, व बाद शहरीन उखरा, और एक महीने के बाद दूसरी, व बाद शहरीन उखरा, और एक महीने के बाद एक और भी वाके हो जाएगी, यानी तीनों पूरी हो जाएंगी। लिअन्ना शहर फी हकीहा दलील उल हाजती, इसलिए क्योंकि महीना जो है इनके हक में हाजत की दलील है। लिअन्ना शहर फी हकीहा दलील उल हाजती का तोहरी फी हक ज़वातिल अक़रा अलामा बैयन्ना, इसलिए क्योंकि महीना जो है इसके हक में, ये जो आयसा और सगीरा मदखूल बिहा है इसके हक में महीना जो है दलील उल हाजती, वो हाजत की दलील है। कद तोहरी फी हक ज़वातिल अक़रा, जैसे कि तोहर जो है वो हैज वालियों के हक में, जैसे हैज वालियों के हक में तोहर जो है वो दलील हाजत है, तो आयसा और सगीरा के हक में महीना یہ حاجت کی دلیل ہے بھائی. علامہ بینا, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ان کے حق میں مہینہ جو ہے وہ حیض کے قائم مقام ہے. وہ ان نوا سلاس ساعتا, اور اگر خاون نے یہ نیت کی کہ تین طلاقیں اسی گھڑی واقع ہو جائیں, اسی عائشہ یا صغیرہ کے مسئلے میں خاون نے کیا نیت کی ہے کہ تین طلاقیں اسی گھڑی میں اسی وقت میں واقع ہو جائیں, وقعنا عندنا لما قلنا, تو یہ تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائیں گی, لما قلنا, اس وجہ سے جو ہم نے ذکر جو ہم نے کہہ دیا, کہ لفظ کے اندر بھی اس کا احتمال ہے اور نیز اس نے نیت بھی کر لی, تو اب یہ ثابت ہو جائیں گی. بخلاف ما اذا قال, بخلاف اس صورت کے کہ جب خامن نے یہ کہا انت طالق للسنتی. بھئی دوسری صورت, اب سلاسن کا لفظ خاون ذکر نہیں کرتا, صرف کیا کہتا ہے انتی طالقون لسنتی, انتی طالقون لسنتی, اور خاون اس کے لیے تین طلاقوں کا ارادہ کرتا ہے. تو اگر تین طلاقوں کا ارادہ کیا پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ خاون نے کیا کہا انتی طالقون لسنتی, سلاسن کا لفظ ذکر نہیں کیا. تو تین کی نیت کرنا چاہتا ہے تو تین کی بھی نیت کر سکتا ہے, کیونکہ طلاق حسن وہ بھی سنت طریقہ ہے طلاق کا. لیکن اگر خاون نے تین کے اکٹھا واقع کرنے کا ارادہ کیا تو پھر یاد رکھو پھر صرف ایک ہی طلاق ہوگی, اکٹھی تین کا ارادہ یہاں صحیح نہیں. توجہ ہے کیا بات ہوئی, خاون نے کیا کہا ہے انت طالقون لسنتی, چاہے حیض والی کو کہا ہو چاہے عائشہ یا صغیرہ وغیرہ کو کہا ہے, سب میں ایک ہی حکم ہے کیا کہ اگر خاون نے کیا کہا انتی طالقون لسنتی اور ارادہ کیا تین طلاقوں کا, تو حیض والی کے لیے ہر طہر میں ایک ایک طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر وہ عائشہ یا صغیرہ ہیں تو ایک طلاق اسی وقت فوراً واقع ہو جائے گی, دوسری مہینے کے بعد اور تیسری اگلے مہینے کے بعد. یہ تھا تین کی نیت کی. لیکن اگر خاون نے تین کے اکٹھی نیت کی انت طالقون لسنتی اور ارادہ کیا کیا تین اکٹھی واقع ہو جائیں, تو پھر اس صورت میں یاد رکھو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی, تینوں اکٹھی واقع نہیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی, دیکھیے صاحب ہدایت اس کو بیان فرمائیں گے. بخلاف ما اذا قال, بخلاف اس کے کہ جب خاون نے یہ کہا انت طالق للسنتی کہ تجھے طلاق ہے سنت طریقے پر, ولم ينص على الثلاث, اور خاون نے تصریح نہیں کی تین کے لفظ پر, یعنی تین کا لفظ ثلاثہ کا لفظ ذکر نہیں کیا, حیث لا تصح نیت الجمع فیہ, اس طور پر کہ اس کے اندر جمع کی نیت صحیح نہیں ہے یعنی اکٹھی تین نہیں ہو سکتی, لأن نیت الثلاث انما صحت فیہ من حیث ان اللام فیہ للوقت فیفید تعمیم الوقت ومن ضرورته تعمیم الواقع فیہ. بھئی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. بھئی دیکھیے پچھلے مسئلے میں خاون نے کیا کہا تھا انتی طالق ثلاثن لسنتی, تجھے تین طلاقیں ہیں سنت طریقے پر, سنت طریقے پر یعنی سنت وقت کے اندر, اور سنت وقت کیا تھا حیض والی میں طہر اور عائشہ اور صغیرہ میں ایک ایک مہینے کی تفریق کے ساتھ, وہاں تو سلاسن کا لفظ تھا, لیکن یہاں پر سلاسن کا لفظ نہیں ہے اور یہاں پر بھی لس سنت کے اندر لام وقت کے لیے ہے. تو خاون نے کیا کہا ہے انت طالق لس سنتی ای انت طالق وقت سنتی, اور ارادہ کس کا کر رہا ہے تین کا, تو گویا اس نے وقت میں تعمیم کر دی. انت طالق لسنتی ای وقت سنتی, تجھے طلاق ہے سنت وقت میں اور نیت کیا کر رہا ہے تین طلاقوں کی, تو یہ خاون گویا وقت کے اندر تعمیم کر رہا ہے. تو تین وقتوں کے اندر تین طلاقیں ہو جائیں گی عورت کو, خاون نے کیا کر دیا وقت کے اندر تعمیم کر دی, اور جب وقت میں تعمیم کر دی تو اس میں طلاقوں کی بھی کیا ہو جائے گی تعمیم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی, تو خاون نے تین کی نیت کی ہے تو اس وقت کے اندر کیا آ گئی تعمیم آ گئی, تو تین وقتوں کے اندر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. لیکن اگر خاون نے جمع کا ارادہ کیا ہے کہ اکٹھی ہو جائیں, جب اکٹھی ہونے کا ارادہ کیا ہے تو تعمیم وقت نہیں, انت طالق لسنتی اس وقت سنت کے اندر تعمیم नहीं, जब इसके अंदर तामीम नहीं तो इसके अंदर जो तलाक वाके होनी थी उसमें भी तामीम नहीं होगी, लिहाजा एक ही तलाक वाके होगी। बात भी समझ में आई कि नहीं? देखो देखो फिर समझो, गुज़श्ता मिसाल के अंदर खावन ने सलासन का लफ्ज भी जिक्र किया था, अंति तालिकुन सलासन लिस सुन्नती, वहां पर अगर खावंद ने इकट्ठे जमा करने का भी इरादा किया तो उसका इरादा ठीक है, क्योंकि वहां सलासन का लफ्ज जिक्र है और यहां पर सलासन का लफ्ज जिक्र नहीं है, सिर्फ अंति तालिकुन लिस सुन्नती, ये लाम आ रहा है वक्त के लिए, भाई तुझे तलाक है सुन्नत वक्त पर, और इरादा कितने का कर रहा है? तीन का। तो मालूम हुआ वक्त के अंदर तामीम आ जाएगी, तो हर सुन्नत वक्त के अंदर एक एक तलाक वाके होती चली जाएगी। यानी यूं कहो वक्त है जर्फ और उसके अंदर तलाक आएगी वो है मजरूफ, तो जर्फ के अंदर जब तामीम आएगी तो मजरूफ यानी तलाक के अंदर भी तामीम आएगी, लिहाजा तीन की नीयत सही है, तो तीन अलग अलग वक्तों में तीन तलाकें हो जाएंगी। किस तरह? अगर तोहर वाली है तो तीन अलग अलग तोहरों में तीन तलाकें हो जाएंगी, यह सुन्नत तरीका है। और अगर आयशा या सगीरा मदखूल भी हा है तो फिर इस सूरत के अंदर एक तलाक इसी वक्त हो जाएगी और फिर आगे महीने महीने के वक्फे से अगली दो तलाकें भी हो जाएंगी। लेकिन अगर खावन ने तीन इकट्ठी देने का इरादा किया इस लफ्ज के जरिए अंति तालिकुन लिस सुन्नती, तो यह लाम किस लिए है? वक्त के लिए है। अंति तालिकुन वक्त सुन्नती, और यहां वक्त के अंदर तामीम नहीं है क्योंकि खावन इकट्ठी देना चाह रहा है
जी।
और जब वक्त के अंदर तामीम नहीं, जब जर्फ के अंदर तामीम नहीं, तो उसके अंदर जो मजरूफ था यानी तलाक उसमें भी तामीम नहीं हो सकती, लिहाजा एक ही तलाक होगी भाई। वहां वक्त के अंदर तामीम थी तीन वक्तों के अंदर तो, और हर वक्त में एक एक तलाक, तो कितनी हो गई? तीन। जर्फ में तामीम आई तो उस मजरूफ के अंदर भी तामीम आ गई, उसकी नीयत ठीक हो गई। लेकिन अगर उसने इकट्ठी देने का इरादा किया है तो उसने वक्त के अंदर तामीम नहीं की, जब वक्त के अंदर तामीम उसने बातिल कर दी तो जो उसके अंदर तलाकें होनी थी उनमें भी तामीम क्या हो गई? बातिल हो गई, एक ही तलाक वाके होगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं बिखिलाफी मा इदा काल अंति तालिकुन लिस सुन्नति, बखिलाफी सूरत के जब खावन ने अपनी बीवी से अंति तालिकुन लिस सुन्नत कहा, वलम यनस अला सलासी, और खावन ने तसरीह नहीं की सलासा के लफ्ज पर, है सुला तसिहु नियतुल जमई फीही, इस तौर पर कि इसके अंदर खावन की जमा की नीयत सही नहीं होगी, लिअन्न नियत सलासी इन्नमा सहत फीही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर तीन की नीयत जो सही होती है वो इस एतबार से होती है, मिन हैसु इन्ना लाम फीही लिल वक्ती, कि इसके अंदर जो लाम है वो वक्त के लिए है, फयुफीदु तामीम अल वक्ती, तो ये जो नीयत की है तीन की तो ये तामीम वक्त का फायदा देगा, व मिन जरूरती ही तामीम उल वाकई फीही, और वक्त की तामीम के साथ जरूरी है कि उस वक्त के अंदर जो वाक होने वाली चीज है यानी तलाक उसमें भी क्या है, उसमें भी तामीम आ जाए, तो तीन वक्तों में तीन तलाकें वाके हो जाएंगी, फैदा नवल जमा, और फिर जब इस शख्स ने जमा की नीयत की कि इकट्ठी तीन तलाकें उसने इरादा किया है तो बतला तामीमुल वक्ती, तो वक्त की तामीम जो है वो बातिल हो जाएगी। जब वो इकट्ठी देना चाह रहा है मालूम हुआ वक्त के अंदर वो तामीम नहीं कर रहा तो तामीम वक्त जो है बातिल हो जाएगी। तो कहते हैं फैदा नवल जमा, जब खामन ने जमा का इरादा कर लिया बतला तामीम उल वक्त, तो तामीम वक्त जो है वो बातिल हो गई, फला तसिहु नियतु सलासी, तो लिहाजा तीन की नीयत सही ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई भाई? पिछले मसले में देखो अंति तालिकुन सलासन लिसुन्नती, उसमें सलासन का लफ्ज खुद मौजूद था, वहां अगर वो तीन की इकट्ठी नियत करता था तो भी लिसुन्नत की तामीम तो अगरचे बातिल हो गई थी लेकिन सलासन का लफ्ज खुद मौजूद था इसलिए तीन तलाकें हो जाती थी। लेकिन यहां पर तो सलासन का लफ्ज नहीं है, इसी लिसुन्नत के अंदर हम तामीम पैदा कर देंगे। क्या कर देंगे? अंति तालिकुन लिसुन्नत, तुम्हें सुन्नत तरीके पर तलाक है और नियत कितने की कर रहा है? तीन तलाकों की। और सुन्नत तरीका क्या है तलाक हसन का? हर ऐसा तोहर जिसमें सोहबत न की हो उसमें तलाक दी जाती है, तो लिहाजा गोया वो तीन की नियत करके इस लिसुन्नत यानी वक्त सुन्नत के अंदर तामीम कर रहा है, और जब वक्त के अंदर तामीम आएगी तो वक्त के अंदर जो तलाक वाके हो रही थी उसमें भी तामीम आती चली जाएगी और तीन तलाकें पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब उसने तीन इकट्ठी वाके करने का इरादा किया तो उसने वक्त के अंदर तामीम को बातिल कर दिया, वक्त था जर्फ और तलाक थी उसके अंदर मजरूफ, तो जब ज़र्फ में तामीम खत्म तो मजरूफ की तामीम भी खत्म, क्योंकि मजरूफ में तो तामीम आ ही ज़र्फ की तामीम की वजह से रही थी, तो लिहाजा इसलिए एक ही तलाक वाकई होगी सूरत में। बात समझ में आ गई, इकट्ठी यानी तीन नहीं हो सकती। आगे देखिए भाई, फसलन वयकउ तलाक कुल्ली ज़ौजिन इदा कान आकिलन बालिगन वला यकउ तलाक सबी वल मजनून वन नाइम। जी अब ये आसान मसले हैं, देखिए भाई कहते हैं वयकउ तलाक कुल्ली ज़ौजिन, और वाक हो जाती है तलाक हर खावंद की, इदा कान आकिलन बालिगन, जब वो आकिल और बालिग हो, वला यकउ तलाक सबी वल मजनून वन नाइमी, और बच्चे की और मजनून की और सोए हुए शख्स की तलाक वाक नहीं होती। मजनून को तो अकल है ही नहीं, और बच्चा जो है उसको भी अपने नफे नुकसान की तमीज नहीं है, और सोया हुआ शख्स उसको तो होश ही नहीं है। बाद लोगों को नींद में बातें करने की आदत होती है, तो अगर कोई नींद में तलाक दे देता है तो वो वाकए नहीं होगी। तो कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलाम, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल के, आपने फरमाया कुल्लु तलाकिन जायजुन इल्ला तलाक असबी वल मजनूनी, हर तलाक जायज है यानी नाफिज है सिवाय बच्चे और मजनून की तलाक के। वली अन्नल अहलियत बिल अक्ल मुमय्यिज़, इसलिए क्योंकि अहलियत यानी तलाक देने की जो अहलियत होती है बिल अक्ल मुमय्यिज़, उस अकल के जरिए होगी जिसके जरिए तमीज की जा सके, अक्ल मुमय्यिज़ जिसके जरिए इंसान अच्छे बुरे में तमीज कर सके, नफे नुकसान को पहचान सके, और बच्चे में भी यह अकल नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अन्नल अहलियत बिल अक्ल मुमय्यिज़, इसलिए क्योंकि तलाकी जो अहलियत है वह अक्ल मुमय्यिज़ के जरिए होगी। वहुमा अदीमल अक्ल, वहुमा अदीमा, असल में था अदीमानी तो नून इजाफत से गिर गया। वहुमा अदीमल अकली, और ये दोनों जो बच्चा और मजनून हैं ये तो अदीमुल अकल हैं, इनकी अकल नहीं है। वन्नाइमु अदीमुल इख्तियारी, और जो सोया हुआ है वो अदीमुल इख्तियार है यानी उसको इख्तियार नहीं, उसको कोई होश नहीं है। वह तलाकुल मुकरह वाकिउन खिलाफन लिशाफिई रहमहुल्लाह, मुकरह यानी मजबूर शख्स जिसके साथ जबरदस्ती की गई है उसकी तलाक वाकई हो जाएगी। खिलाफन लिशाफिई रहमहुल्लाह, खिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के। और याद रखो इकराह से मुराद इकराह कामिल है, कोई शख्स दूसरे को जान से मारने की धमकी देता है या आजा के तलब करने की धमकी देता है या इस तरह की कोई खौफनाक धमकी देता है तो फिर ही इसको मुकरह कहेंगे। और अगर कोई शख्स सिर्फ एक डंडा उठाकर ले आया कि अपनी बीवी को तलाक दो नहीं तो एक डंडा लगाऊंगा और यह फौरन तलाक दे देता है भाई, यह तो कोई इकराह नहीं है भाई। तो कहते हैं वह तलाकुल मुकरह वाकिउन खिलाफन लिशाफिई रहमहुल्लाह, और मुकरह की तलाक वाकई है बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के। हुआ यकूल, वो फरमाते हैं इन्नल इकराह ला युजामिउल इख्तियार, कि इकराह जो है वो इख्तियार के साथ जमा नहीं हो सकता, जब इकराह आ जाता है तो इख्तियार खत्म हो जाता है। वह बिही युअतबरु तसर्रुफ शरईय, और तसर्रुफ शरई का एतबार तो इख्तियार से ही होता है, कोई अपने इख्तियार से कोई तसर्रुफ करे वही मोतबर होता है। बेखिलाफिल हाजिल, बखिलाफ हाजिल यानी मजाक करने वाला भाई, याद रखो मजाक के अंदर भी कोई शख्स अपनी बीबी को तलाक देगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। बात समझ में आ गई, कई दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं और लोगों को चूंकि दीनी मसाइल का पता नहीं होता, बीवी के साथ बैठे हुए मोहब्बत की बातें हो रही हैं, मोहब्बत मोहब्बत में वैसे ही कहता है जी मैंने तुम्हें तलाक दे दी, हंस के फिर दोबारा कहता है मैंने तुम्हें तलाक दे दी, फिर कहता है मैंने तुम्हें तीसरी भी तलाक दे दी, हंसी मजाक में है, लेकिन हंसी मजाक में भी तलाक देगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। बाज लोग आकर मसला पूछते हैं कि हमने बड़े गुस्से में तलाक दी थी तो तलाक वाकई हो जाएगी कि नहीं, तो भाई तलाक तो दी ही गुस्से में जाती है, तलाक वाकई हो जाएगी। बाज औरतें आती हैं वो मसाइल पूछती हैं कि मैं हामिला थी, हालत हमल में तलाक दी थी, तो लोगों का ख्याल होता है शायद हालत हमल में तलाक नहीं होती, नहीं भाई तलाक हर हालत में हो जाती है। और बाज औरतें मसाइल पूछती हैं कि खावन ने मुझे तलाक दी लेकिन मैंने कबूल नहीं की, भाई आपके कबूल करने से तलाक का क्या ताल्लुक है, खावन तलाक देगा तो तलाक वाकई हो जाएगी, आप कबूल करें या कबूल न करें। बल्कि औरत का सुनना भी जरूरी नहीं है, खावन खलवत के अंदर बैठा हुआ है और कहता है मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो याद रखो तलाक हो गई, और अगर उसने खलवत में बैठे हुए तीन तलाकें दे दी तो बीवी हमेशा के लिए हराम भी हो गई। اب اگر بیوی کے ساتھ وہ صحبت کرتا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے، وہ سب زنا ہے، تو لہذا طلاق کے معاملے میں بہت احتیاط ضروری ہے بھائی. لہذا معلوم ہوا مذاق کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں بخلاف الحاضلی، بخلاف حاضل یعنی مذاق کرنے والے کے، کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. لانہ مختار ان فی تکلم بالطلاقی، اس لیے کیونکہ وہ تکلم بالطلاق میں مختار ہے، وہ اپنے اختیار سے طلاق پر تکلم کر رہا ہے. ہاں ایک بات ہے، وہ اس کے حکم پر راضی نہیں ہے، وہ تو مذاق میں طلاق دے رہا ہے، وہ اس عورت کو طلاق دینا نہیں چاہتا. تو لیکن حکم پر راضی ہو یا راضی نہ ہو، طلاق نے واقع ہونا ہے، اس نے جب کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں بخلاف الحاضلی، بخلاف مذاق کرنے والے کے، لانہم مختار ان فی تکلم بالطلاقی، اس لیے کیونکہ وہ تو با اختیار ہے طلاق پر تکلم کرنے میں. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ قصد ایقاع الطلاق فی منکوحتہ، کہ جو مکرہ ہے اس نے طلاق واقع کرنے کا ارادہ کیا ہے، فی منکوحتہ اپنی منکوحہ بیوی میں، فی حال اہلیتہ اس حال میں کہ اس شخص میں اہلیت بھی ہے، یعنی عاقل بالغ ہے، عاقل بالغ ہے. تو جب اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے اور اپنی اہلیت کی حالت میں طلاق دینا چاہ رہا ہے، یہ عاقل بالغ بھی ہے، فلا یعرا، یہ طلاق خالی نہیں ہوگی، عن قضیتی ہی اپنے حکم سے، یعنی طلاق کا حکم بھی آ جائے گا، طلاق واقع بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے بیوی کو طلاق دے رہا ہے. تو کہتے ہیں فلا یعرا عن قضیتی ہی، لہذا یہ طلاق جو اس نے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے دی ہے یہ خالی نہیں ہوگی، عن قضیتی ہی، قضیہ حکم، طلاق کے حکم سے یہ خالی نہیں ہوگی، دفعا لحاجتی ہی اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. اس کی حاجت کیا ہے؟ دوسرے نے بندوق نکالی ہے یا تلوار نکالی ہے کہ میں تمہیں زخمی کروں گا یا قتل کروں گا، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اس کو حاجت ہے اپنے چھٹکارے کی، یہ اس شخص سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، قتل یا زخمی ہونے سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، تو اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کو واقع قرار دیا جائے، کہ طلاق واقع ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں فلا یارا عن قضیتی ہی، لہذا یہ طلاق خالی نہیں ہوگی اپنے حکم سے، یعنی واقع ہو جائے گی، دفعا لحاجتی ہی اس آدمی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اعتبارا بالطائع قیاس کرتے ہوئے طائع پر، طائع کہتے ہیں فرما بردار، یعنی جو شخص اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، جیسے جو شخص اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو اپنی اہلیت کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو حاجت ہے طلاق دینے کی. تو لہذا یہ جو مکرہ ہے اس کو بھی حاجت ہے اپنی جان بچانے کی اور اپنے اعضاء کو بچانے کی، لہذا اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ طلاق کو واقع قرار دیا جائے. تو ہم اس مکرہ کو طائع پر قیاس کرتے ہیں، جیسے اپنی مرضی سے جو طلاق دینے والا ہے اس کو شریعت نے حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت دی ہے، وہ عورت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، ورنہ تو طلاق تو اصل میں ممنوع چیزوں میں سے ہے، لیکن اس کی حاجت کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی مکرہ جو ہے اس کی حاجت ہے، وہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، تو جیسے طائع کو حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہے، تو مکرہ کو بھی اپنی چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے دفعا لحاجتی ہی اعتبارا بالطائع، اس کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، قیاس کرتے ہوئے طائع فرما بردار پر، یعنی وہ شخص جو اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہو اس پر قیاس کرتے ہوئے، وہذا اور یہ اس وجہ سے، لانہ عرف شرین، اس لیے کیونکہ مکرہ نے دو شروں کو پہچان لیا. ایک شخص نے تلوار نکال لیا اور اس کو آ کر کہا ہے بیوی کو طلاق دو نہیں تو میں تمہارا ہاتھ کاٹتا ہوں یا تمہیں قتل کرتا ہوں. اب اس آدمی کے پاس دو شر سامنے آ گئے، ایک طرف جان جا رہی ہے، دوسری طرف بیوی جا رہی ہے، اور اس نے اپنے اختیار سے ہلکے شر کو چن لیا، بیوی کو طلاق دے دی. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ مکرہ جو ہے وہ تو مجبور ہے، وہاں تو اختیار نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں بھی اختیار ہے، یہ اپنے اختیار سے ہلکے والے شر کو چن رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهَذَا لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ، اور یہ اس لیے کیونکہ اس آدمی نے دو شروں کو جان لیا، وَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا، اور اس نے اختیار کر لیا ان دونوں میں سے جو ہلکا شر تھا اس کو. وَهَذَا آیَةُ الْقَصْدِ وَالْاِخْتِيَارِ، اور یہ قصد اور اختیار کی نشانی ہے، दो शर्रों में से हल्के शर को अपनी मर्जी से इख्तियार करना यह कस्द और इख्तियार की निशानी है। मालूम हुआ इसने कस्द किया है तलाक का और इसने इख्तियार के साथ किया है। तो कहते हैं वहादा आयतुल कस्द वल इख्तियारी, और यह शख्स के इरादे और उसके इख्तियार की निशानी है। इल्ला अन्नहु गैरु राज़िन बिहुक्मिही, हां एक बात है कि यह शख्स इस तलाक के हुक्म पर राजी नहीं। ये तलाक जुबान से तो दे रहा है लेकिन चाहता है वाकई न हो
जी।
कहते हैं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो हाजिल जो था, जो मजाक करने वाला था, वो भी तलाक के हुक्म पर राजी नहीं था लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ा, तलाक वाकई हो गई थी। तो ये भी शख्स जो मुकरह है, ये भी तलाक के हुक्म पर राजी नहीं है लेकिन तलाक वाकई हो जाएगी। ये माना है इल्ला अन्नहु गैरु राज़िन बिहुक्मिही, मगर यह कि यह शख्स जो है तलाक के हुक्म पर राजी नहीं है। वदालिका गैरु मुखिल्लिन बिही कल हाजिली, वदालिका गैरु मुखिल्लिन बिही, लेकिन यह वुकूए तलाक में कोई खलल डालने वाला नहीं। उसका राजी न होना इससे वुकूए तलाक में कोई खलल नहीं आएगा। तो कहते हैं वदालिका गैरु मुखिल्लिन बिही, और यह वुकूए तलाक में कोई खलल डालने वाला नहीं है। कल हाजिली, जैसे कि मजाक करने वाला था, वो भी वुकूए तलाक पर राजी नहीं था लेकिन उससे भी कोई खलल नहीं आया, तलाक वाकई हो गई। व तलाक उस सकरानी वाकिउन, अब मदहोश शख्स की तलाक का जिक्र आ गया। वो शख्स जो नशे में मदहोश है वो तलाक देता है। तो अगर कोई शख्स मदहोश है, कहते हैं देखा जाएगा यह नशा इसने अपनी मर्जी से किया है या नहीं। अगर उसने अपनी मर्जी से यह नशा किया है तो फिर इस सूरत में यह तलाक वाकई हो जाएगी बतौरे डांट के। अगरचे इसकी अकल इस वक्त जाइल है लेकिन इसने गुनाह का काम किया, खुद नशा किया है, लिहाजा बतौरे डांट के इसकी यह तलाक जो है यह वाकई हो जाएगी। और अगर किसी को जबरदस्ती शराब पिलाई गई या किसी और वजह से उसने दवा खाई थी और उसकी वजह से इसको नशा चढ़ गया, उसकी नीयत दवा की थी और उसको नशा चढ़ गया और होश उसके ठिकाने न रहे और उसने बीवी को तलाक दे दी, तो इस सूरत में याद रखो तलाक वाकई नहीं होगी। क्योंकि इसको जबरदस्ती शराब पिलाई गई या इसने तो दवा खाई थी और उसकी वजह से नशा हो गया या कोई और वजह जिससे अकल जाती रही और इसने बीवी को तलाक दे दी, तो लिहाजा इस सूरत में यह शख्स अदीमुल अकल हुआ। और अदीमुल अकल जैसे बच्चा और मजनून थे, उनकी तलाक वाकई नहीं होती थी, तो इसकी तलाक भी वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं व तलाक उस सकरानी वाकिउन, और मदहोश शख्स की तलाक वाकई हो जाएगी। वख्तियार उल करखी ये व तहावी ये रहिमहुमल्लाहु ताला अन्नहु ला यकाउ, जबकि इमाम करखी और इमाम तहावी रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं अन्नहु ला यकाउ के मदहोश की तलाक वाकई नहीं होगी। वह हुआ अहदु कौल शाफी रहमहुल्ला, और यही इमाम शाफी रहमहुल्ला के दो कौलों में से एक है। लिअन्न सिहत अल-क़स्द बिल-अक़्ली, इसलिए क्योंकि इरादे का सही होना अकल से होता है। वह हुआ ज़ाइलुल अक़्ली, और ये जो मदहोश है ये तो ज़ाइलुल अक़्ल है, यानी इसकी तो अकल ज़ाइल हो चुकी है, लिहाजा इसका कोई इरादा नहीं। जब इरादा नहीं तो तलाक भी वाकई नहीं। फसारा का जवाल ही बिल बंज व दवाई, तो ये इसी तरह हो गया जैसे इसकी अकल जाइल हुई हो। बिल बंज, बंज से मुराद है भंग भाई, भंग। व दवाई, दवा से अफ्यून वगैरह जो नशे वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। याद रखो यहां मसला जिक्र कर रहे हैं कि मदहोश की जो तलाक है वो इमाम करखी और इमाम तहावी रहिमहुमल्ला के नजदीक वाकई नहीं होगी, और वो इसको कयास करते हैं भंग और अफ्यून वगैरह पर जो दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो फरमाते हैं जैसे भंग और अफ्यून वगैरह जो दवा है उसकी वजह से जैसे किसी को नशा हो जाए तो उसमें अगर वो तलाक दे दे तो वो तलाक वाकई नहीं होती। तो इसी तरह मदहोश जो है जिसने शराब वगैरह पी है इसकी भी अकल जाइल है, लिहाजा इसकी भी तलाक वाकई नहीं होगी। तो वह मदहोश को किस पर कयास करते हैं? भंग और अफ्यून वगैरह इस्तेमाल करने वाले पर, और भंग और अफ्यून वाले के अंदर तो तलाक वाकई नहीं होती। तो मुहशी हजरात फरमाते हैं कि यह मुतकद्दिमीन के मजहब पर है, मुतकद्दिमीन के नजदीक भंग और अफ्यून वगैरह का इस्तेमाल हराम नहीं था, क्योंकि वह अच्छा जमाना था, नेकी का जमाना था, तो लोग इन चीजों को दवा के तौर पर तो भंग या अफ्यून को इस्तेमाल करते थे लेकिन नशे के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मुताखिरीन ने इनके हराम होने का हुक्म दिया, इसलिए क्योंकि अब लोग इनको नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इमाम करखी और इमाम तहावी ने सकरान की तलाक को किस पर कियास किया? भंग और अफ्यून का इस्तेमाल करने वाले की तलाक पर। और मुतकदमीन के नजदीक तो भंग और अफ्यून का इस्तेमाल जायज था, लिहाजा उसकी तलाक वाकई नहीं होती थी। तो वो फरमाते हैं मदहोश की भी तलाक वाकई नहीं होगी, जबकि सही मजहब यह है कि आइंदल अहनाफ मदहोश की तलाक वाकई हो जाएगी भाई। और याद रखना यहां मदहोश से मुराद वो शख्स है जो इंतहा, जो नशे में इंतहा को पहुंचा हुआ है, हत्ता कि वो जमीन और आसमान के दरमियान भी फर्क नहीं कर सकता। तो जब ये मदहोश जिसको जमीन और आसमान का ही पता नहीं चल रहा, बतौर सजा के जब इसकी तलाक वाकई हो जाती है, तो इससे जो कम नशे वाला होगा, वो शख्स जो कम नशे में है, उसकी तलाक तो बतरीके औला वाकई हो जाएगी भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ली अन्न सिहत अल कस्द बिल अक्ली, इसलिए क्योंकि इरादे का सही होना तो वो तो अकल से होता है। वह हुआ ज़ाइलुल अक्ली, और ये शख्स तो जो है ज़ाइलुल अक्ल है, ये जो मदहोश है इसकी तो अकल ज़ाइल हो चुकी है। फसारा का ज़वाल ही बिल बंज व दवाई, तो ये इसी तरह हो गया जैसे कि इसकी अकल ज़ाइल हो भंग या दवा के जरिए। वलना हमारी दलील यह है कि अन्नहु जाला बिसबबिन हुआ मासियतुन, कि इसकी जो अकल जाइल हुई है एक ऐसे सबब से हुआ मासियतुन, जो कि मासियत है यानी गुना है, इसने नशा किया है। फजुइला बाकियन हुक्मन, तो लिहाजा हुक्मन इसकी अकल को बाकी करार दिया जाएगा। अकल तो जाइल हो गई है लेकिन हम क्या हुक्म लगाएंगे कि इसकी अकल बाकी है, तो ये हम हुक्म लगाएंगे जजरन लहू, बतौरे इसकी डांट के। तो ये बतौरे डांट के है, यानी यूं कहो बतौरे सजा के है भाई, बतौरे सजा के उसकी तलाक वाकई होगी भाई। कि ये जो मदहोश है जिसने नशा किया है और नशे की वजह से ये मदहोश हो गया है, बतौरे सजा के इसकी अकल के बाकी रहने का हुक्म लगाया जाएगा, कि यानी इसकी अकल बाकी है तो और ये तलाक देगा तो ये तलाक वाकई हो जाएगी। तो ये हुक्म क्यों लगाया गया उसके अकल के बाकी रहने का, अगरचे अकल उसकी जायल हो चुकी है लेकिन बतौरे सजा के कि इसने नाफरमानी की है, नशा किया है, लिहाजा इसकी तलाक वाकई हो जाएगी बतौरे सजा के। तो कहते हैं फज्जु इला बाकियन हुक्मन, तो इसकी अकल को बाकी करार दिया जाएगा हुक्मन बेतबार हुक्म के। जजरन लहू, इसकी डांट के तौर पर। हत्ता लौ शरीबा फसुद्दिया, यहां तक कि अगर किसी शख्स ने शराब पी, फसुद्दिया फिर उसको सर दर्द हुआ, वजाला अक्लुहू बिसुदाई, और उस शख्स की अकल जाइल हो गई बिसुदाई सर दर्द की वजह से, यानी इतना शदीद सर दर्द हुआ कि उसकी अकल ही जाइल हो गई और उसने उस हालत में बीवी को तलाक दी, तो याद रखो फुकाहा फरमाते हैं तलाक वाकई नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये जो अकल जाइल हुई है वो ये सर दर्द की वजह से अकल जाइल हुई है, शराब पीने की वजह से नहीं। शराब पीने की वजह से अगर अकल जाइल होती तो फिर इस सूरत में यह तलाक वाकई हो जाती। यह तो शराब का नशा खत्म हो गया था और उसके बाद फिर इसको सरदर्द शुरू हुआ और फिर उस सरदर्द की वजह से इसकी अकल जाइल हुई, तो लिहाजा इस जवाल अकल की इल्लत वो मासियत नहीं है, लिहाजा इसकी तलाक वाकई नहीं होगी। हत्ता लौ शरिबा फसुद्दिया, यहां तक कि अगर किसी शख्स ने शराब पी फिर उसको सरदर्द हुआ, वज़ाला अक्लुहु बिसुदाई और सरदर्द की वजह से उसकी अकल जाइल हो गई, नकूलु तो हम कहते हैं इन्नहु ला यक़ऊ तलाकुहु कि उसकी तलाक वाकई नहीं होगी। व तलाकुल अखरस वाकिउन बिल इशारती, अखरस कहते हैं गूंगे को, व तलाकुल अखरस वाकिउन बिल इशारती और गूंगे की तलाक इशारे से वाकई हो जाएगी। लिअन्नहा सारत माहूदतन, इसलिए क्योंकि इसका इशारा जो है वो मुकर्ररा है। याद रखो गूंगा जो है वो तो बोल नहीं सकता, तो उसके हर चीज के इशारे मुकर्रर होते हैं, लोग उनको समझते हैं, तो जब मुकर्ररा इशारे के साथ वो तलाक का इशारा कर रहा है तो उसका यह इशारा भी उसके बयान की तरह है, लिहाजा उसका यह इशारा भी तकल्लुम के दर्जे में है, लिहाजा उसकी तलाक वाकई हो जाएगी भाई। لِأَنَّهَا صَارَتْ مَعْهُودَةً, اس لیے کیونکہ اس کا اشارہ جو ہے وہ مقررہ ہو چکا ہے. فَأُقِيمَتْ مَقَامَ الْعِبَارَتِ, تو لہذا اس کا یہ اشارہ بھی اس کی عبارت یعنی اس کے الفاظ کے قائم مقام ہوگا. دَفْعًا لِلْحَاجَتِ, اس کی حاجت دور کرنے کے لیے. وَسَتَأْتِيكَ وُجُوهُهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, اور عن قریب اس کی وجوہ آپ کے پاس کتاب کے آخر میں آ جائیں گی انشاء اللہ, یعنی کہ ہدایہ کے آخر میں, چوتھی جلد کے بالکل آخر میں جا کر صاحب ہدایہ اس گونگے کے بارے میں چند مسائل ذکر فرماتے ہیں. تو کہ اس کے اشاروں کا کیا حکم ہے, تو کہتے ہیں وہاں پر یہ گونگے کے جو اشارے ہیں ان کی وجوہ وہاں ذکر فرمائیں گے صاحب ہدایہ بھائی. آگے دیکھیے, کہتے ہیں وطلاق الامت سنتانی, اور باندی کی دو طلاقیں ہیں. حرن کان زوجہا او عبدن, یاد رکھو عند الاحناف طلاق کا تعلق عورت سے ہے. عورت اگر باندھی ہے تو اس کی دو طلاقیں ہیں, اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کا خاوند تین طلاقوں کا مالک ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق خاوند سے ہے. خاوند اگر آزاد آدمی ہے تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا, اور اگر خاوند غلام ہے تو وہ دو طلاقوں کا مالک ہوگا. جبکہ ہمارے نزدیک طلاق کا تعلق عورت سے ہے. تو کہتے ہیں وہ طلاق الامت سنتانی, اور باندی کی دو طلاقیں ہیں. حرن کان زوجہا او عبدا, چاہے اس کا خاوند آزاد ہو یا غلام ہو. وہ طلاق الحرۃ ثلاثن, اور آزاد عورت کی تین طلاقیں ہیں. حرن کان زوجہا او عبدا, چاہے اس کا خاوند جو ہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو. وقال الشافعی رحم اللہ, اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں عدد الطلاق معتبر بحال الرجال, کہ طلاق کا عدد جو ہے وہ مردوں کے حال کے ساتھ معتبر ہے. طلاق کی تعداد کا اعتبار مردوں کی حالت کے ساتھ ہے. لقولہ علیہ السلام, وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء. الطلاق بالرجال ای اعتبار الطلاق بالرجال, طلاق کا اعتبار مردوں کے ساتھ ہے. وہ اعتبار العدت بالنساء, اور عدت کا اعتبار عورتوں کے ساتھ ہے. تو دیکھو حدیث میں تو کیا آیا الطلاق بالرجال والعدت بالنساء, لیکن وہ یہاں اعتبار کا لفظ مضاف محذوف نکالتے ہیں. اعتبار الطلاق بالرجال واعتبار العدت بالنساء. وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ, اور اس لیے کیونکہ مالک ہونے کی صفت کرامتن, یہ اعزاز ہے, یہ تو عزت والی چیز ہے کسی چیز کا مالک ہونا. وَالْآدْمِيَّةُ مُسْتَدْعِيَّةٌ لَهَا, اور آدمی ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے. کسی چیز کا مالک ہونا یہ عزت والی بات ہے, اور آدمی ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے. کوئی انسان ہے اور انسان کو بھی اللہ نے کیا بنایا ہے, معزز بنایا ہے, تو آدمی ہونا یہ مالک ہونے کا تقاضا کرتا ہے. وہ معنی الآدمیت فی الحر اکملو, اور آدمی ہونے کے جو معنی ہے وہ آزاد آدمی میں زیادہ کامل ہے, لہذا یہ زیادہ طلاقوں کا مالک ہوگا اور غلام کم طلاقوں کا مالک ہوگا. دلیل سمجھ میں آئی؟ پھر دیکھ لیجئے, کہتے ہیں ولی ان صفت المالکیت کرامتن, اس لیے کیونکہ مالک ہونے کی جو صفت ہے, مالک ہونے کا جو وصف ہے کرامتن, یہ اعزاز ہے. والآدمیت مستدعیت لہا, اور آدمی ہونا وہ اس اعزاز کا تقاضا کرتا ہے. ومعنى الآدمية في الحر أكمل, اور آدمی ہونے کا جو معنی ہے وہ آزاد آدمی میں زیادہ کامل ہے, تو وہ زیادہ طلاقوں کا مالک ہوگا. فکانت مالکیته ابلغ واكثر, لہذا آزاد آدمی کا مالک ہونا وہ افضل اور زیادہ ہوگا, وہ زیادہ طلاقوں کا مالک ہوگا. ولنا, اور ہماری دلیل جو ہے قوله علیہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے طلاق الامت سنتانی وعدتها حیضتانی, کہ باندی کی دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں. وَلِأَنَّ, آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں, وَلِأَنَّ حَلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا وَلِلرِّقِ أَثَرٌ فِي تَنصِيفِ النِّعَمِ. جی بھائی دیکھیے, ہم کہتے ہیں یہ عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا کہ مرد اسے نکاح کر سکتا ہے, یہ عورت کے حق میں نعمت ہے. عورت کا مرد کے لیے محل نکاح ہونا یہ نعمت ہے بھائی, نعمت ہے. اس لیے کیونکہ جب مرد اسے نکاح کرے گا تو عورت کے لیے نفقے کا بندوبست بھی ہو گیا, اس کے لیے رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا, اور نیز वो गुनाहों से भी अब बच जाएंगे, मियां बीवी अब क्या है गुनाहों से भी बच जाएंगे। तो देखो औरत का मर्द के लिए महल्ले निकाह होना ये नियामत है और बांदी के हक में नियामत की तंसीफ होती है। तो आजाद औरत जब तीन तलाकों के साथ मर्द के लिए हलाल है तो बांदी को निसफ तलाकों के साथ मर्द के लिए हलाल होना चाहिए, बांदी की डेढ़ तलाक होनी चाहिए। लेकिन तलाक की तो तंसीफ हो नहीं सकती, लिहाजा बांदी की दो तलाकें होंगी, यानी उस आधी तलाक को भी पूरा कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो औरत का मर्द के लिए महल्ले निकाह होना यह क्या है नियामत, और गुलामी से नियामत क्या हो जाती है कम। लिहाजा आजाद औरत तीन तलाकों के साथ हलाल है तो बांदी को डेढ़ तलाक के साथ हलाल होना चाहिए, लेकिन तलाक की चूंकि तंसीफ नहीं हो सकती इसलिए बांदी दो तलाकों के साथ खावंद के लिए हलाल होगी। तो कहते हैं वली अन नहिलल महल्लियति, इसलिए क्योंकि इस महल का हलाल होना नियामतुन फी हकीहा, यह नियामत है औरत के हक में। वली अन नहिलल महल्लियति, इसलिए क्योंकि महल का हलाल होना नियामतुन फी हकीहा, यह औरत के हक में नियामत है। वली रिक असरुन फी तंसीफ निआमी, और गुलामी का असर होता है नियामतों को आधा करने में। इल्ला अनल उकदता ला ततजज़ा, उकदा याद रखो, उकदा वैसे गिरा को कहते हैं, रस्सी वगैरह या धागे में कोई गिरा लगाई जाए तो उसको कहते हैं, लेकिन यहां तलाक मुराद है, तलाक मुराद है। यानी यूं कहो उकदा तो असल में निकाह है, मियां बीवी के अंदर निकाह है जिसने जोड़ पैदा किया हुआ है, लेकिन वो निकाह सबब है इस तलाक का। निकाह है तो तलाक दे सकता है, निकाह नहीं तो तलाक भी नहीं। तो सबब वाला नाम मुसब्बब यानी तलाक को दे दिया। उकदा तो असल में क्या है, निकाह है, लेकिन यह नाम किसको दे दिया, तलाक को। तवज्जो है, क्योंकि निकाह सबब है इस तलाक का, निकाह है तो तलाक दे सकता है, निकाह नहीं तो तलाक भी नहीं। तो निकाह सबब हुआ इस तलाक का, तो तलाक इसका मुसब्बब है, तो मुसब्बब पर वही सबब वाले लफ्ज का इतलाक कर दिया। और ऐसा होता है कभी कभार कि मुसब्बब पर सबब वाला लफ्ज बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन्नल उकदता ला ततजज़ा, मगर यह कि तलाक जो है वो तकसीम नहीं हो सकती। फतकामलु उकदतानी, तो दो तलाकें पूरी हो जाएंगी। वतावील उमा रवा, और उस हदीस की तावील जो उसके इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया, कौन सी हदीस थी, अत्तलाकु बिर्रिजाली वल इद्दतु बिन्निसाई। तो वहां उन्होंने कौन सा लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाला था, एतबार, एतबार उत्तलाक बिर रिजाली, के तलाक का एतबार मर्दों से है। हम कहते हैं नहीं, यहां ईका का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकालें, ईका उत्तलाक बिर रिजाली, तलाक वाके करना किसका काम है, मर्द का काम है, औरत का काम नहीं। तो उन्होंने मुजाफ क्या निकाला, एतबार, और हमने कहा ईका, भाई ईका उत्तलाक बिर रिजाली। तो कहते हैं वह तावील उमा रवा, और तावील उस हदीस की जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया, क्या नल ईका अबिर रिजाली, के तलाक का वाके करना ये मर्दों के सुपुर्द है। वह इजा तजव वजल अब दुमर अतन भी इजनी मौला हु, भाई आप जानते हैं कि गुलाम आका की इजाजत के बगैर कहीं निकाह नहीं कर सकता। अब एक गुलाम ने अपने आका की इजाजत से एक औरत से निकाह कर लिया, तो आप ये तलाकों का मालिक गुलाम होगा या आका मालिक होगा तलाकों का। तो याद रखो हमारे नजदीक ये तलाकों का मालिक गुलाम होगा, क्योंकि ये औरत गुलाम के लिए हलाल हुई है, तो तलाक देना भी किसके सुपुर्द होगा, गुलाम के सुपुर्द है, आका के सुपुर्द नहीं है। भाई कहते हैं वईजा तजव वजल अब्द उम्रअतन, और जब कोई गुलाम किसी औरत से निकाह कर ले, भी इज्नी मौलाहू अपने आका की इजाजत से, व तल्लकहा, और फिर वो गुलाम अपनी इस बीवी को तलाक दे, वका तलाकुहू, तो इस गुलाम की तलाक वाके हो जाएगी। वला यकउ तलाकु मौलाहू अल इम्रअतिही, और उसके आका की तलाक उसकी बीवी पर वाके नहीं होगी। लिअन्न मिल्क निकाह ही हक्कुल अब्द, इसलिए क्योंकि मिल्क निकाह गुलाम का हक है। फयकून इस्कातु इलैही, तो इस मिलके निकाह को साकित करना भी इसी गुलाम के सुपुर्द होगा। दून अल मौला, न के आका के सुपुर्द। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।